आगे सबक देखिए भाई, औकान बाद खला व आदा अल मुस्तस्ना मनसूबन अयजन वजूबन इदा कान बाद आदा मिन आदा यादु आदवन इदा जा वजहू मिसलु जा अनिल कौमु आदा जैदन औ बाद खला मिन खला यखलु खुलवन नहु जा अनिल कौमु खला जैदन। मुस्तस्ना की बहस चल रही है। आपने पढ़ा कि मुस्तस्ना का एराब चार किस्म पर होगा। कभी मुस्तस्ना मनसूब होता है, कभी मुस्तस्ना मजरूर होता है, कभी मुस्तस्ना बदल वाक़े होगा और कभी मुस्तस्ना का एराब अला हसबिल हवामिल होगा। तो सबसे पहली किस्म जो थी जिसमें मुस्तस्ना पर नसब आता है, उसका बयान साहिब काफिया ने शुरू किया था। तो वो जगह वो शुमार कर रहे हैं जहां मुस्तस्ना वजूबन मनसूब होगा। उनमें से पहली जगह थी कि जब मुस्तस्ना इल्ला के बाद आए और कलाम मूजब में हो तो वो वजूबन मनसूब होगा। दूसरी किस्म हमने कल पढ़ी थी कि जब मुस्तस्ना मुकद्दम हो मुस्तस्ना मिनहू पर तो भी वो मनसूब होगा, चाहे कलाम मूजब हो चाहे कलाम गैर मूजब हो। तीसरी जगह भी हमने पढ़ी थी कि मुस्तस्ना जब वो मुस्तस्ना मुनकतिअ हो तो अक्सर लुगात के मुताबिक वो मनसूब होगा वजूबन। और फिर साहिब जामी ने आपको बतलाया कि मुस्तस्ना मुनकतिअ जो है वो अक्सर नहवियों के नजदीक मुतलकन मनसूब होगा। मुतलकन मनसूब होगा, वजह यह कि इसके अंदर बदल का तसव्वुर नहीं किया जा सकता सिवाय बदलुल गलत के। भाई मैंने आपको तफसील बतलाई थी कि बदल जो है वो चार किस्म पर है, एक बदलुल कुल, एक बदलुल बाज, एक बदलुल इस्तेमाल और एक बदलुल गलत। बदलुल कुल इसे कहते हैं कि बदल और मुबदल मिनहू दोनों का मदलूल एक ही हो, जैसे जा अनी जैदुन अखू का, आया मेरे पास जैद यानी कि आपका भाई। अब देखो आपका भाई है उसका नाम जैद है, अब चाहे मैं कहूं जा अनी जैदुन या मैं कहूं जा अनी अखू का, बात एक ही है। अब मैं दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूं जा अनी जैदुन अखू का, तो ये जैदुन जो है ये मुबदल मिनहू बनेगा और अखू का उससे बदल बनेगा और दोनों का एराब एक ही होता है। तो ये बदलुल कुल है। बदलुल कुल किसे कहते हैं कि मुबदल मिनहू और बदल दोनों का मदलूल एक ही हो। भाई जैद से भी वही जात मुराद है और अखू का आपका भाई इससे भी वही जात मुराद है, तो ये बदलुल कुल है। दूसरी किस्म बदलुल बाज है, जिसमें बदल जो है वो जुज होता है, वो बाज होता है उस मुबदल मिनहू में से। मसलन मैं कहता हूं जरबतु जैदन रअसहू, मैंने जैद को मारा रअसहू यानी उसके सर को, तो देखो ये रअसहू बदल है जैद से और जैदन मनसूब था तो रअसहू भी मनसूब है क्योंकि बदल पर वही एराब आता है जो मुबदल मिनहू पर हो। और देखो ये जैद जो है ये मुबदल मिनहू है और रअसहू जैद का सर ये बदल है और जैद का सर वो जैद का जुज है उसका बाज है, तो ये बदलुल बाज हुआ। और तीसरी किस्म थी बदलुल इस्तेमाल। बदलुल इस्तेमाल ये है कि बदल जो है वो न मुबदल मिनहू का कुल होता है और न उसका बाज, हां उसके साथ उसका ताल्लुक होता है। जैसे सुलीबा जैदुन, सुलीबा सीन लाम बा भाई, सुलीबा सल्ब, सल्ब का माना है छीनना भाई। सुलीबा जैदुन, जैद को छीना गया, सौबुहू यानी उसके कपड़े को, जैद को छीना गया यानी उसके कपड़े को। तो देखो यहां जैदुन ये है मुबदल मिनहू, ये मरफू है और सौबुहू जो इससे बदल है वो भी मरफू है भाई। और ये देखो ये जो जैद का कपड़ा है न ये जैद का कुल है न ये उसका जुज है बल्कि इसका जैद के साथ ताल्लुक है भाई कि ये जैद का कपड़ा है भाई। लेकिन मैंने बताया बाज और उलमा हैं उन्होंने बदलुल इस्तेमाल की बड़ी प्यारी तारीफ की जिससे बात बिल्कुल वाजे हो जाती है। वो फरमाते हैं कि बदलुल इस्तेमाल वो होता है कि मुबदल मिनहू वो फेल को कबूल नहीं करता, वो महल्ले फेल नहीं बनता, आपने तो बना दिया सुलिबा जैद, उन जैद को छीना गया, लेकिन जहन कबूल नहीं कर रहा कि भाई जैद को छीनने का क्या मतलब, जैद से कोई चीज तो छीनी जा सकती है, खुद जैद को तो नहीं छीना जा सकता। तो आपने कहा सुलिबा जैद, ये जैद जो है सुलिबा फेल को कबूल नहीं कर रहा, जहन अभी भी मुंतजिर है कि कोई और लफ्ज आगे आना चाहिए जो इस फेल को यानी सल्ब को कबूल कर ले, और फिर आगे सौबुहु जब आपने कहा तो उसने इस सल्ब को कबूल कर लिया। सुलिबा जैदुन, जैद को तो नहीं छीना जा सकता लेकिन सौबुहु उसके कपड़े को छीना जा सकता है। सुलिबा जैदुन सौबुहु, छीना गया जैद को यानी उसके कपड़े को। अब बात वाजे हो गई। तो यह है बदलुल इज्तिमाल। और चौथा है बदलुल गलत। बदलुल गलत मैंने आपको बतलाया वो बदल है कि जिसका सबब गलती बनती है। मैं आपको कहना यह चाहता था कि मेरे पास बकर आया, मेरे पास बकर आया लेकिन गलती से जुबान पर जैद आ गया। मैंने कहा जा अनी जैदुन, लेकिन बताना क्या चाहता था, बकर आया है, तो मैं फौरन ही इसलाह करते हुए बकर भी कह देता हूं, जा अनी जैदुन बकरुन, ये जैद गलती की वजह से मेरी जुबान पर आया और बकरुन मैंने फौरन इसलाह भी कर दी, तो ये बदलुल गलत है। ये बकरुन मैं क्यों लेकर आया, जैदुन मुबदल मिनहू बनेगा और बकर बदल, ये बदल मैं क्यों लाया, क्योंकि ये जो मुबदल मिनहू था ये मैं गलती से ले आया था, मैं तो इसको लाना ही नहीं चाहता था, अब मैं उस गलती की तलाफी करना चाहता हूं, तो फौरन ही आगे मैंने बकरुन कह दिया। मेरे पास जैद आया यानी बकर आया। बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी आपको साहिबे जामी बतला रहे हैं कि जो मुस्तस्ना मुनकत्या होता है यह हम मुतलकन मंसूब है अक्सर नहवियों के नजदीक, इसके अंदर बदल का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता सिवाय बदलुल गलत के, सिवाय किसके, बदलुल गलत के। मसलन मैं आपसे कहता हूं मा जा अनिल कौमु इल्ला हिमारन, ये हिमार क्या है, मुस्तस्ना मुनकत्या है, अगर आप इसको बदल बनाना चाहते हैं तो बदलुल कुल भी नहीं बन सकता क्योंकि मा कबल में है अलकौम और मा बाद में क्या है हिमार। बल्कि दूसरी मिसाल ले लें, मा जा अनी जैदुन इल्ला अमरन, मेरे पास जैद नहीं आया इल्ला अमरन मगर अमर, ये देखो मा कबल में जैद जिक्र है और मा बाद में अमर है और ये अमर ये तो जैद के अंदर दाखिल नहीं भाई, तो ये मुस्तस्ना मुनकत्या हुआ। मुस्तस्ना मुनकत्या किसे कहते हैं, जो गैर मुखरज हो क्योंकि वह माकबल में दाखिल ही नहीं होता, तो यह अमर भी जैद के अंदर दाखिल नहीं भाई। तो यह मा जा अनी जैदुन इल्ला अमरन, अब आप इस अमर को क्या बनाना चाहते हैं, जैद से बदल बनाना चाहते हैं, तो बदलुल कुल नहीं बना सकते क्योंकि बदलुल कुल में तो दोनों का मदलूल एक होता है और यहां तो एक तरफ जैद है दूसरी तरफ आमर है, दोनों अलग अलग जाते हैं, दोनों का मदलूल एक नहीं। नीस हम इसको बदलुल बाज भी नहीं बना सकते, इसलिए क्योंकि ये जो बाद में आमर जिक्र हो रहा है ये माकबल यानी जैद का बाज भी नहीं है, उसका जुज भी नहीं है, तो ये बदलुल बाज भी नहीं बन सकता। नीस बदलुल इस्तेमाल भी नहीं बन सकता, बदलुल इस्तेमाल तो वो है कि उससे माकबल वाला फेल को कबूल ही नहीं करता। और मैंने क्या कहा, मा जा अनी जैदुन, मेरे पास जैद नहीं आया, जैद तो आदम मजियत को कबूल कर रहा है भाई, तवज्जो है, तो लिहाजा ये आमर आगे इल्ला के बाद जो आमर जिक्र है ये बदलुल इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। हां एक एहतमाल है कि आप इसको बदलुल गलत बनाएं, बदलुल गलत बनाएं, लेकिन वो भी यहां नहीं तसव्वुर किया जा सकता। वजह यह कि जो बदलुल गलत लाया जाता है यह गलती और गफलत की वजह से लाया जाता है। बदलुल गलत क्यों लाते हैं, क्योंकि आपसे गलती हो गई, अब आप उसकी इसलाह करना चाहते हैं, तो यहां ये मुस्तस्ना मुनकत्या के अंदर ये जो मुस्तस्ना है इसको बदलुल गलत भी नहीं कह सकते क्योंकि बदलुल गलत गलती की और गफलत की वजह से लाया जाता है, और मुस्तस्ना मुनकत्या वो तो फसीह कलाम के अंदर बड़े गौर और फिक्र और बड़ी जहानत के बाद लाया जाता है। और मैंने इसकी मिसाल भी जिक्र की थी कि मसलन ला आइब फीही गैर अन्नहु शुजाउन, मसलन इस किस्म की तारीफ इस अंदाज में शुआरा तारीफ करते हैं अपने कलाम के अंदर, ला आइब फीही उसमें कोई आयब नहीं इल्ला, मगर एक बात है सुनने वाला समझता है माकबल में ऐबों की नफी की है, तारीफ की है। ला ऐब फीहिम, उनमें उसमें कोई ऐब तो ऐब न होना ये तारीफ है, और इल्ला आगे जिक्र किया तो वो समझता है अब आगे कोई ऐब जिक्र होगा। लेकिन आगे वो फौरन क्या कह देता है, गैर अन्नहु शुजाउन, मगर ये कि वो बहादुर है। अब गौर किया तो देखा माकबल में भी तारीफ है, इल्ला के माबाद भी क्या है, तारीफ है, तवज्जो है। तो माकबल में देखो ऐबों की नफी की, तो ख्याल था कि इल्ला के बाद अब किसी ऐब को लाकर उसका इस्बात किया जाएगा, और लेकिन माबाद में फिर तारीफ कर दी। अब मुझे बताइए ला ऐब फीहिम किस चीज की नफी की है, ऐबों पीछे ऐब का जिक्र है किसका, और आगे शुजात का जिक्र है। मुझे बताइए शुजात ऐब है, ये उसके अंदर दाखिल है, ये तो उसके अंदर दाखिल नहीं, तो ये मुस्तस्ना मुनकत्या है भाई। तो इल्ला से माकबल भी तारीफ और इल्ला के माबाद भी तारीफ है। गोया कहने वाला ये कहना चाहता है कि जिस शख्स की मैं तारीफ कर रहा हूं उसमें कोई ऐब नहीं, उसमें ऐब होने की एक ही सूरत है कि आप शुजात को क्या तस्लीम कर लो, ऐब तस्लीम कर लो। लेकिन शुजात तो सिफत कमाल है, उसको तो कोई भी ऐब नहीं कहता, शुजात पर तो लोग फखर करते हैं। तो गोया कहने वाला यह कहना चाहता है मेरे ममदूह में जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूं उसके अंदर ऐब होने की एक ही सूरत है कि आप शुजात को ऐब तस्लीम कर लो, और अगर आप ये तस्लीम नहीं कर सकते तो फिर मेरे ममदूह में ऐब का होना मुमकिन ही नहीं है। बात समझ में आ गई, तो देखो ये कितनी जहानत वाला कलाम है भाई। तो यहां सिर्फ बदल उल गलत का तस्वूर था लेकिन वो भी यहां मुमकिन नहीं है भाई। तो मुस्तस्ना मुनकते अक्सर लुगात में मंसूब होता है। हां बनु तमीम वाले वो इसकी तकसीम करते हैं कि मुस्तस्ना मुनकतिया दो किस्म पर है, एक वो मुस्तस्ना मुनकतिया जिसमें इल्ला से माकबल वाले इसम को हजफ भी कर लें फिर भी कलाम सही रहता है, कलाम में कोई खराबी नहीं आती। तो इस किस्म के मुस्तस्ना के अंदर, इस किस्म के मुस्तस्ना मुनकतिया में वो बदल भी जायज करार देते हैं। जैसे अभी मैंने मिसाल जिक्र की मा जा अनी जैदुन इल्ला अमरान, इसमें माकबल से अगर जैद को हजफ भी कर दें फिर भी कलाम सही रहता है। मा जा अनी इल्ला अमरान, मा जा अनी इल्ला अमरान, कलाम अभी भी सही है, बल्कि अमरुन फिर मरफू पड़ेंगे मा जा अनी इल्ला अमरुन, तवज्जो है। तो मा जा अनी इल्ला अमरुन, अभी अमर मा जा आ के लिए फाइल बन जाएगा। लेकिन बहरहाल बात यह चल रही है कि यहां इल्ला से माकबल वाले इसम को हजफ भी कर दिया जाए तो कलाम के माना में कोई खराबी नहीं आती। तो इस किस्म के मौका पर वो नसब के साथ बदल भी जायज करार देते हैं। तवज्जो है, अब हजफ नहीं करना, देखो मा जा अनी जैदुन इल्ला अमरन, अक्सर लुगात में अमरन पढ़ना वाजिब, लेकिन बाज़े लुगात यानी बनु तमीम वाले क्या कहते हैं इसमें अमरुन भी पढ़ सकते हैं, इसको जैदुन से बदल भी बना सकते हैं और नसब भी पढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा ना हो मुस्तस्ना, यानी मुस्तस्ना मुनकते ऐसा हो कि माकबल वाले इसम को हजफ करना जायज ना हो, उसे माना खराब होता हो, तो फिर इस सूरत में वो भी अहले हिजाज की मुआफकत करते हैं और कहते हैं नसब ही वाजिब है। जैसे ला आसिम अल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहीम भाई, वो कहते हैं ये मन रहीम, ये जो मन है यह ये मनसूब ही होगा वजूबन, अलबत्ता ये महलन मनसूब है क्योंकि मबनी है। तो देखो ये आयत जो जिक्र की ला आसिम अल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहीम, इसके अंदर ये जो मन रहीम है यहां आयद महजूफ है अई मन रहीमहू, और इससे मुराद मरहूम है यानी मासूम है। माकबल में आसिम का जिक्र है, माबाद में मासूम का जिक्र है, तो यह मुस्तस्ना मुनकतिया हुआ क्योंकि आसिम के अंदर मासूम दाखिल नहीं, आसिम बचाने वाला है और मासूम जिसको बचाया गया है भाई, तो ये मुस्तस्ना मुनकते है। मैंने बताया था कि बाजों ने इसको मुस्तस्ना मुत्तसिल भी बनाया है कि मन रहीम से अल्लाह की जात मुराद ले ली, और अल्लाह भी अल्लाह क्या है आसिम है बचाने वाले हैं, तो माकबल में भी आसिम का जिक्र और माबाद में भी आसिम का जिक्र है, तो ये मुस्तस्ना मुत्तसिल भी हो सकता है। या इस आसिम ही को मासूम के माना में ले लें, जैसे दाफिक बमाने मदफूक के, तो माकबल में भी मासूम का जिक्र और इल्ला के बाद भी मासूम का जिक्र है, तो इस सूरत में भी मुस्तस्ना मुत्तसिल हो जाएगा। और याद रखो इसके अंदर ये मिसाल उस मुस्तस्ना मुनकते की है जिसमें माकबल वाले इसम को हजफ करना जायज नहीं, इसलिए क्योंकि माकबल में ला आसिमा है, ला नफी जिंस है और आसिम इसका इसम है और खबर मौजूदुन महजूफ है, तो अब इस आसिम को हजफ करना जायज नहीं। अगर इसको भी हजफ करेंगे फिर तो आपने ला का अमल बिल्कुल ही बातिल कर दिया, खबर भी महजूफ और इसम भी महजूफ हो जाएगा, इसलिए यह जायज नहीं भाई। अब आइए आज के सबक पर भाई। औकान बाद खला व अदा अल मुस्तस्ना मनसूबन ऐजन वजूबन इदा कान बाद अदा मिन अदा यादु अदवन इजा जा वजहू मिसलु जा अनिल कौम अदा जैदन औ बाद खला मिन खला यखलू खुलवन नहु जा अनिल कौम खला जैदन। भाई अब यह चौथा मकाम आ गया। साहिबे काफिया आपको बतला रहे थे कि मुस्तस्ना मंसूब होगा वजूबन, उनमें से पहली जगह कौन सी थी जबकि मुस्तस्ना इल्ला के बाद हो कलामे मुजब में तो भी वजूबन मंसूब होगा। दूसरी जगह थी कि जब मुस्तस्ना मुकद्दम हो मुस्तस्ना मिन्हू पर, वहां पर भी वो वजूबन मंसूब होगा। तीसरी जगह थी कि जहां मुस्तस्ना मुनकतिअ हो तो वो भी अक्सर नहवियों के नजदीक वजूबन मंसूब होगा। अब ये चौथा मकाम आ गया कि मुस्तस्ना किसके बाद आए, खला और आदा के बाद, तो भी ये वजूबन मंसूब होगा। ये चौथा मकाम आया। जरा पहले मतन मतन देख लीजिए। औकान बाद खला व अदा फिल अक्सरी, या वो मुस्तस्ना खला और आदा के बाद हो फिल अक्सरी यानी अक्सर इस्तेमालात में। मुस्तस्ना जब किसके बाद आए, खला और आदा के बाद, तो वो भी वजूबन मंसूब होगा अक्सर इस्तेमालात में, यानी बाज इस्तेमालात के अंदर वो मजरूर भी होता है लेकिन अक्सर इस्तेमालात में मंसूब होगा वजूबन। अब शरा के साथ इसको देखिए। औकान बादा खला व आदा अल मुस्तस्ना मंसूबन ऐजन वजूबन इजा कान बादा आदा। अच्छा भाई, यहां से अब आपको तफसील बतलाएंगे। मैंने आपको बतलाया था कि ये जो कलिमात इस्तिस्ना हैं, ये खला अदा मा खला मा अदा लैसा लायकूनु गैरुन सिवा सवा हाशा और इल्ला, ये जो कलिमात इस्तिस्ना हैं इनके बाद मुस्तस्ना वाके होता है, यानी इस्तिस्ना के लिए जब इनको इस्तेमाल किया जाए तो इनके बाद जो वाके होगा वह मुस्तस्ना होगा, मुस्तस्ना होगा। और मुस्तस्ना किसे कहते हैं, जिसका हुक्म माकबल से मुखालिफ होता है। माकबल वालों के लिए अगर एक चीज का इस्बात है तो इस मुस्तस्ना से उस चीज की नफी होगी, और अगर माकबल वालों से एक चीज की नफी है तो इस मुस्तस्ना के लिए उसका इस्बात होगा। तो इनमें बास सूरतों के अंदर मुस्तस्ना मंसूब होगा, लेकिन यह याद रखना कि यह जो मुस्तस्ना का नसब है यह इस्तिस्ना की वजह से जरूरी नहीं होगा मंसूब, यह जो सूरतें जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यह नसब इस्तिस्ना की वजह से जरूरी नहीं। बाज सूरतों में इस पर जो नसब आएगा वो इस्तिस्ना की वजह से आएगा, और बाज सूरतों में जो नसब आएगा वो मफूल बिही या काना वगैरह की खबर होने की वजह से आएगा। जैसे एक मिसाल पिछले सबक में भी गुजरी थी कि कारा तु इल्ला यौम कजा, देखो यहां पर भी इल्ला यौम कजा, ये यौम कजा मुस्तस्ना है, मुस्तस्ना है और यह मनसूब है, लेकिन इसका नसब इस्तिस्ना की वजह से नहीं है बल्कि मफूल फी यानी जर्फ होने की वजह से है। इसी तरह खला और आदा के बाद आपको बताएंगे, ये खला और आदा फेल हैं, इनके बाद जो मुस्तस्ना आएगा वो भी मंसूब है लेकिन उसका नसब इस्तिस्ना की वजह से नहीं है बल्कि वो मफूल भी ही बन रहा है इस खला और आदा के लिए, तवज्जो है। इसी तरह मा खला और मा आदा के बाद वहां पर भी जो मुस्तस्ना आएगा इनके बाद वो भी मंसूब होगा लेकिन वो भी मफूल बिही होने की वजह से होगा। खला और आदा के बाद भी मफूल बिही, मा खला और मा आदा के बाद भी मफूल बिही, और जबकि लैसा और लायकूनू के बाद जो मुस्तस्ना आएगा वो भी मंसूब होगा लेकिन वो लायकूनू और लैसा की खबर होने की वजह से मंसूब होगा, इसलिए क्योंकि लैसा और लायकूनू अफाले नाकिसा में से हैं, ये एक इसम चाहते हैं और एक खबर, इनके इसम पर रफा आता है और खबर पर नसब, तो जब इस्तिस्ना के लिए ये आए तो इनके बाद जो मंसूब होगा वो इनकी खबर होने की बिना पर मंसूब होगा। तो बात समझ में आ गई, हासिल कलाम क्या हुआ कि मुस्तस्ना बाज सूरतों में मंसूब होता है लेकिन उसका नसब जरूरी नहीं इस्तिस्ना की वजह से हो, वो मफूल बिही या काना वगैरह की खबर होने की वजह से भी मंसूब हो सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आया चूंकि खला और अदा की बात आई, तो अब साहिब जामी आपको तफसील बतलाएंगे कि ये जो खला और अदा ये फेल हैं, ये फेल हैं, और इनके बाद जो मंसूब आता है वो दरअसल मफूल बिही है। फेल क्या करता है, अपने फाइल को रफा देता है और मफूल बिही को नसब देता है। तो इनके अंदर फाइल की जमीर होगी, जैसे जराबा जैदन, जराबा के अंदर हुआ जमीर को फाइल बनाएंगे और जैदन क्या बनेगा, मफूल बिही बनेगा। तवज्जो है। तो इसी तरह यहां पर ये अफाल हैं और इनके बाद जो मंसूब आएगा वो मफूल बिही होने की वजह से मंसूब होगा। और नीस साहिबे जामी आपको बतलाएंगे कि ये खला और अदा नाकिसे वावी हैं, और ये खला का बाब बतलाएंगे आपको कि ये खला यखलो खुलवन से है। खला यखलो खुलवन यानी नाकिसे वावी है और बाब नसारा से है, खला यखलो खुलवन। और इसी तरह अदा ये भी नाकिसे वावी है और ये भी बाबे नसरा से है, अदा यादू अदवन, अदवन इसका मस्तर है भाई। यहां एक और नुक्ता आपको बतलाऊं भाई, सर्फ के अंदर आपने गर्दानें याद की हैं, देखो वहां गर्दान पड़ी है रमा यर्मी रम्यन, रमा पहला माजी का सीगा, कैसे लिखते हैं, रा मीम और या साथ मिलाते हैं जो दरअसल किससे बदल चुकी है, अलिफ से। और जबकि यहां पर देखें खला और अदा ये वो अलिफ से बदला है, लेकिन वो नहीं लिखा, दोनों को अलिफ के साथ लिखा गया है। खला भी आखिर में अलिफ है, अदा में भी आखिर में अलिफ है। तो ये याद रखना, ये किताबत का नुक्ता भाई, कि जब भी या तरफ में वाके हो, किनारे पर, आखिरी किनारे पर आए और वो या किससे बदल जाए, अलिफ से बदल जाए, तो लिखेंगे फिर भी उसको या ही की सूरत में। और अगर आखिर में वाव आए और वो वाव अलिफ से बदल जाए तो फिर वहां वाव नहीं लिखेंगे बल्कि उस वाव को लिखेंगे भी अलिफ की सूरत में। तो या अलिफ से बदले तो या ही की सूरत में लिखेंगे, और वाव अलिफ से बदले तो उसको अलिफ की सूरत में लिखते हैं। जाब्ता समझ में आया। तो कहते हैं औ बादा खला व अदा, जी तो क्या क्या बतलाएंगे आपको यहां कि खला और अदा नाकिसे वावी हैं, इनका बाब बतलाएंगे कि ये बाबे नसरा से हैं, और फिर साथ ये बतलाएंगे कि जो अदा है ये फेले मुतादी है। फेले मुतादी किसे कहते हैं, जो मफूल को नसब भी देता है। तो खला ये फेले मुतादी है, ये बमाने जावजा के है, जावजा का माना गुजर जाना, तजावुज कर जाना। मसलन जैद बैठा है और मैं उसके पास से गुजर गया, तो मैं कहूंगा जावस तू जैदन, मैं जैद के पास से गुजरा, मैं जैद से आगे बढ़ गया। बात समझ में आ गई। तो ये देखो जावस तू जैदन, देखो ये मफूल को नसब दे रहा है, और जबकि खला यखलू का माना है खाली होना, और ये मीन के जरिए मुतादी होता है। मसलन मैं कहता हूं खलल बई तू मीन जैदिन, बैत कमरे को कहते हैं, खलल बैतु वो कमरा खाली हुआ, मीन जैदिन किससे, जैद से। तो अदा जो है वो फेले मुतादी है, वो मफूल बिही को नसब देता है, और खला जो है वो फेले लाजिम है, वो मफूल बिही को नसब नहीं देता बराह रास्त, बल्कि वो मीन के जरिए मफूल की तरह मुतादी होता है। खलल बैतु मीन जैदिन, कमरा खाली हुआ जैद से, तो देखो मीन के जरिए यह मुतादी हो रहा है जैद की तरफ। बात समझ में आ गई। देखिए भाई किताब पर औकान बादा खला व अदा, या वो मुस्तस्ना जो है खला व अदा के बाद हो, पीछे बतलाया था वह हुआ मनसूबन के मुस्तस्ना क्या होगा, वजूबन मनसूब होगा, कब, इजाकाना, इजाकाना बादा इल्ला पीछे आया था, अब आया है औकाना बादा खला व अदा, जब वो मुस्तस्ना किसके बाद हो, खला और अदा के बाद हो। अल मुस्तस्ना मनसूबन अयजन वजूबन, यानी मुस्तस्ना जो है वो नीज मनसूब होगा वजूबन, इजाकाना बादा अदा, जब वो किसके बाद आए, अदा के बाद आए, मिन अदा यादू अदवन, और ये अदा किससे है, अदा यादू अदवन से है, यानी ये फेले माजी का सीगा है, पहला सीगा। इजा जा वजहू, और ये कब कहते हैं आदा, इजा जा वजहू, जो कोई शख्स किसी पर से गुजर जाए, किसी के पास से तजावुज कर जाए, आगे निकल जाए। देखो जा वजहू, ये जा वजहू के आखिर में हा जमीर आ रही है, इससे पता चल गया कि ये मुतअद्दी है, ये हा जमीर मफूल के साथ मिली हुई है। तो ये जा वजहू के साथ ये जो जमीर मंसूब साथ जोड़ दी, इसने बतला दिया कि ये फेल मुतअद्दी है, इस जावजा के अंदर हुआ जमीर फाइल है, और ये जो हा जमीर आखिर में है ये मफूल बिही की है, ये मंसूब महलन है भाई। तो कहते हैं इजा कान बाद आदा, जब ये मुस्तस्ना आदा के बाद हो, मिन आदा यादू अदवन, ये इस आदा यादू अदवन से है, इजा जा वजहू, जब वो उसके पास से गुजर जाए, उस पर तजावुज कर जाए, मिसलू जा अनिल कौम आदा जैदन, जा अनिल कौम आदा जैदन, तर्जमा वही होगा भाई, जा अनिल कौम आदा जैदन, मेरे पास वो लोग आए सिवाय जैद के, यानी जैद नहीं आया। और बाद खला, या मुस्तस्ना किसके बाद आए, खला के बाद आए, खला के बारे में भी बतला रहे हैं, कहते हैं कि ये माजी का सिगा है, कहते हैं मिन खला यखलू खुलवन, ये खला किस से है, खला यखलू खुलवन से है, यानी नाकिस है और माजी का सिगा है भाई, वाहिद मुजक्कर गायब का। नहु मिसाल के तौर पर जा अनिल कौम खला जैदन, आए मेरे पास वो लोग सिवाय जैद के, तवज्जो है, अभी बा मुहावरा तर्जमा, आगे वो पूरी तफसील बयान करेंगे कि खला का माना है खाली होना, फिर इसका तर्जमा कैसे होगा, और आदा का माना है तजावुज करना, उस सूरत में कैसे माना होगा, वो भी अभी आगे बयान करेंगे भाई। तो यहां उसी तरह माना करें, जा अनिल कौम खला जैदन, आए वो लोग मेरे पास सिवाय जैद के, वह हुआ फिल असली लाजिमुन, और ये जो खला है ये असल के अंदर फेले लाजिम है, यह तअद्दा इलल मफ़ऊली बिमिन, और ये मफ़ऊल की तरफ मुतअद्दी होता है मिन के जरिए। मैंने आपको बतलाया था भाई कि ये हुरूफ़े जार्रा ये फेल को मुतअद्दी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन मैंने आपसे कहा ज़रबतु ज़ैदन, मैंने जैद की पिटाई की, ज़रबतु फेल बा फाइल है और ज़ैदन मफ़ऊल बिही है। अब मैं इसके साथ अल आसा, यानी आसा का माना लाठी, तो मैं इसके साथ आसा को भी जोड़ना चाहता हूं, लेकिन अब आसा को मैं बराह रास्त फेल के साथ नहीं जोड़ सकता, तवज्जो है, क्योंकि ये जराबा एक मफूल भी ही चाहता है और वो जैदन पहले ही गुजर चुका है। अब अगर मैं अल आसा को साथ जोड़ूंगा तो फेल उसमें अमल कर ही नहीं सकता, उसको नसब दे ही नहीं सकता, तो फिर इस सूरत में हुरूफ़े जार्रा का सहारा लिया जाता है। चुनांचे अब मैं बा हरफे जर लेकर आऊंगा और यूं कहूंगा ज़रबतु ज़ैदन बिल आसा, अब ज़रबतु ने आसा में अमल किया, लेकिन किसके वास्ते से, बा के वास्ते से, तवज्जो है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि ये अल आसा ज़रबतु के लिए क्या बन रहा है, तो आप कहेंगे ये भी ज़रबतु के लिए मफूल भी ही है, लेकिन बराह रास्त मफूल भी ही नहीं है, बल्कि किसके वास्ते से है, बा के वास्ते से, तो इसको कहेंगे मफूल भी ही गैर सरीह, यानी ऐसा मफूल भी ही जो सराहतन मफूल भी ही नहीं है। लफ्जों में तो ये जार मजरूर हैं भाई, लेकिन हकीकत में ये क्या है, ये भी मफूल भी ही है। जैदन भी मफूल भी ही था और अल आसा भी, ज़रबतु ज़ैदन बिल आसा, ये ज़ैदन भी मफूल भी ही, लेकिन ये मफूल भी ही सरीह है, यानी साफ लफ्जों में मफूल भी ही है, फेल इसको नसब दे रहा है, और बिल आसा में ये जो अल आसा आ रहा है ये भी मफूल भी ही है, लेकिन ये सराहतन मफूल भी ही नहीं है, क्योंकि इस पर तो बाहरफे जर दाखिल है, तो इसको कहते हैं मफूल भी ही गैर सरीह, मफूल भी ही गैर सरीह भाई। बात समझ में आ गई, तो यही बयान कर रहे हैं कि ये वह हुआ फिल असली लाजिमुन, कि ये खला जो है असल के अंदर लाजिम है, फिल लाजिम है। यह तअद्दा इलल मफ़ऊली बिमिन, और ये मुतअद्दी होता है मफूल की तरफ मिन के जरिए, तवज्जो है। तो जो भी हुरूफ़े जार्रा इस्तेमाल होते हैं, इनका जो मदखूल होता है, जिस पर ये दाखिल होते हैं, वो माकबल फेल के लिए मफूल भी ही होता है भाई, अलबत्ता गैर सरीह होता है। जैसे मररतु, मररतु का माना गुजरना, यह फेले लाजिम है, और अब मैं कहना यह चाहता हूं कि मैं जैद के पास से गुजरा, तो मैं मररतु ज़ैदन नहीं कह सकता, क्योंकि मररतु फेले लाजिम है, यह ज़ैदन को मफूल बिही को नसाब नहीं दे सकता, तो फिर हुरूफे जारा का सहारा लेते हैं, तो फिर मैं कैसे कहूंगा मरर तो बिजैदिन, मैं जैद के पास से गुजरा, अब माना ठीक हो गया मरर तू बिजैदिन। अब इस जैद के बारे में आपसे कोई पूछे ये क्या है मरर तू के लिए, तो आप क्या कहेंगे ये मफूल भी ही है गैर सरीह भाई। तो यहां पर भी बतलाया कि ये खला फेल लाजिम है और ये मुतादी होता है किसके जरिए, मीन के जरिए। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की खलल बैतु मीन जैदिन, वो कमरा खाली हो गया मीन जैदिन किस से, जैद से, तो अल बैतु ये फाइल बन गया खला के लिए, खलल बैतु ये अल बैत क्या बना फाइल बना किसके लिए खला फेल के लिए, और मीन जैदिन ये जैद क्या है ये मफूल भी ही गैर सरीह है किसके लिए खला के लिए, तवज्जो है। हां तो ये वैसे आपने याद रखना है, वैसे तो तरकीब यूं होगी खला फेल अलबैतु मरफूल अफजान फाइल मीन जारा जैदेन मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक किससे खला फेल से, तो फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया हुआ, तवज्जो है। तो तरकीब तो उसी तरह होगी, जार मजरूर को आप फेल वगैरह से जोड़ेंगे, लेकिन आपने खुद यह बात याद रखनी है कि यह जो मजरूर होता है यह मफूल बिही गैर सरीह होता है, जो भी हर्फ जर उस पर दाखिल हो रहा हो चाहे बा हो चाहे मीन हो चाहे फी हो चाहे इला हो चाहे अला हो, जो भी हर्फ जर जिस चीज पर दाखिल हो रहा है वो दर असल क्या है मफूल बिही गैर सरीह है उस अपने मुतअल्लक के लिए। तो फिर तर्जमा देखिए, कहते हैं वह हुआ फिल असली लाजिमुन, और ये खला जो है ये असल के अंदर फेल लाजिम है, यतअद्दा इलल मफूल बी मीन, और ये मुतअद्दी होता है मफूल की तरफ मीन के जरिए, नहव मिसाल के तौर पर खलतिद दियारु मिनल अनीसी, वही खला से मुअन्नस का सीगा है खला भाई, माजी की गर्दान किस तरह होगी खला खलाया खलाऊ खलत भाई, तो देखो वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है खलत, और अद दियारु ये जमा है दार की, दार की, और ये फाइल है खलत के लिए, तो ये जमा है और जमा बताबीले जमातुन किसके हुक्म में है वाहिद मुअन्नस के हुक्म में, इसलिए खलत फेले मुअन्नस इसके लिए लेकर आए भाई। और नीज वैसे भी याद रखना कि दार का लफ्ज जो है वो मुअन्नस सिमाई है, वो अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है, तो दार का लफ्ज भी मुअन्नस और ये दियार उसकी जमा ये भी मुअन्नस है भाई। खलाती दियारू खाली हो गए वो घर मीनल अनीसी, अनीस कहते हैं उन्स करने वाला यानी मानूस भाई, मानूस अनीस उन्स करने वाला, इसी उन्स से इंसान भी है, इंसान को इंसान इसलिए कहते हैं क्योंकि इंसान एक दूसरे से मानूस होते हैं, एक दूसरे से उन्स करते हैं, इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं, इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं, तो इसलिए इंसान को इंसान कहते हैं। तो ये किसी शायर का कौल है भाई, कदीम फसीह शुआरा के कलाम से ये थोड़ा सा टुकड़ा लिया साहिब जामी ने, खलाती दियारु मिनल अनीसी, वो घर खाली हो गए उन्स करने वालों से, कोई जगह होगी जहां पर शायर या उसका कबीला वगैरह या कोई रहते होंगे और फिर कुछ अरसे के बाद वो वहां से हिजरत कर गए, वो जगह उन्होंने छोड़ दी क्योंकि अरब खानाबदोशों की तरह जिंदगी गुजारते थे, जहां पानी और सब्जा वगैरह होता वहां ठिकाना बना लेते, फिर वहां से जब पानी वगैरह खत्म होता तो दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते जहां पानी मौजूद होता। तो शायद किसी ऐसी ही जगह के बारे में जिक्र कर रहा है जहां उसके कबीले वाले या कोई जानने वाले आबाद थे और फिर बाद में वो वहां से हिजरत कर गए, अब वो जगह खाली और खाली पड़ी हुई थी, तो शायर क्या कहता है खलती दियारु मिनल अनीसी कि खाली हो गए वो घर उन्स करने वालों से, यानी अब वो उजाड़ो बयाबान पड़े हुए हैं, वहां कोई उन्स करने वाला इंसान मौजूद नहीं है। तो बहरहाल ये साहिब जामी ने जिक्र किया बतौर इस्तेशाद के, बताना ये चाहते हैं कि खला यखलू मीन के जरिए मुतअद्दी होता है, खलाती दियारो मीनल अनीस, देखो ये मीन के जरिए मुतअद्दी हो रहा है अनीस की तरफ। वकद युजम मनु माने जावजा और यु हजफो मीन व यू सलुल फ्यालू फयतअद्दा बी नफसी ही, यहां से बयान कर रहे हैं, सवाल ये पैदा हुआ कि आपने हमें बताया कि अदा आदा जो है यह फेले मुतादी है, इसके लिए मफूल आता है। तो जा अनिल कौमो आदा जैदन, तो यह जैदन का मनसूब होना तो हमें समझ में आता है कि यह आदा के लिए क्या बन जाएगा, मफूल बिही। लेकिन खला तो मफूल बिही को नसब देता ही नहीं, तो जा अनिल कौमो खला जैदन, तो फिर यह खला के बाद जैदन क्यों मनसूब है, यह तो मफूल बिही को नसब दे ही नहीं सकता। तो उसके दो जवाब जिक्र करेंगे साहिब जामी। एक ये कि कभी कभार खला वो मुतजमिन हो जाता है जावजा के माना को, जावजा वही जो अभी मैंने जिक्र किया आदा का माना है, किसी के पास से गुजर जाना, तजावुज कर जाना, जावज तू जैदान, मैं जैद के पास से गुजर गया। तो साहिब जामी बतलाएंगे कि कभी कभार खला जो है इसमें जावजा के माना को मलहूज रखा जाता है, यानी यह मुतजमिन होता है जावजा के माना को। किसको भाई? अरबी जुबान में कभी कभार एक फेल के अंदर दूसरे फेल के माना को मलहूज रखा जाता है। तो खला का माना तो है खाली होना, लेकिन इसके अंदर जावजा का माना भी मलहूज हो गया, और जावजा तो मफूल बिही को नसब देता है, तो अब खला भी मफूल बिही को नसब देगा, क्योंकि यह जावजा के माना को मुतजमिन है, जावजा के माना पर अब यह मुश्तमिल है भाई। इसको क्या कहते हैं? तजमीन भाई, एक फेल के अंदर दूसरे फेल का माना मलहूज हो। तो सवाल क्या था कि खला के बाद यह जैदन फिर क्यों मनसूब है अगर यह मफूल बिही को नसब नहीं देता? तो एक जवाब यह कि यहां तजमीन है, खला किसके माना को मुतजमीन है, जावजा के माना को, इसलिए वह जैदन को नसब दे रहा है। बात समझ में आ गई। यह दूसरा जवाब बाज देते हैं कि यहां पर हज्फ ईसाल है। हज्फ ईसाल इसको कहते हैं कि वो जो दरमियान में हरफ जर होता है उसको हज्फ कर लेते हैं, और उसका जो मदखूल था यानी वो जो मजरूर था उसको बराह रास्त फेल के साथ जोड़ देते हैं। जैसे अभी मिसाल गुजरी, खलाती दियारु मीनल अनीसी, ये खला किसके साथ मुतादी हो रहा है? मीन के साथ। तो इस मीन को हजफ कर लेंगे और अल अनीस को बराह रास्त खला से जोड़ दिया, अब खला इसको नसब देगा। यानी पहले ये मफूल बिही गैर सरीह था, मीन मौजूद था, पहले ये अल अनीस क्या था? जब हरफे जर मौजूद, जिस पर हरफे जर दाखिल हो उसको क्या कहते हैं? मफूल बिही गैर सरीह। तो अल अनीस ये मफूल बिही गैर सरीह था खला के लिए, और अब जब मीन को हजफ कर दिया और अल अनीस को बराह रास्त फेल से जोड़ दिया, अब फेल इसको बराह रास्त नसब दे रहा है, ये उसके लिए मफूल बिही बन गया। तो पहले मफूल बिही गैर सरीह था और फिर क्या किया? हजफ ईसाल किया। हजफ का क्या माना? हरफे जर को हजफ कर लिया, और ईसाल का क्या माना? कि उसको साथ जोड़ दिया फेल के। तो यह हज़्फ़ ईसाल की वजह से अब फेल बराह रास्त उसको नसब दे रहा है। तो पहले यह मफूल भी ही गैर सरीह था, अब मफूल भी ही सरीह बन गया। किसकी वजह से? हज़्फ़ ईसाल की वजह से। बात समझ में आ गई। तो यहां दो किस्म की चीजें हो मुमकिन है भाई, या तो यूं कहा जाए कि यह खला के बाद जो मुस्तस्ना मंसूब आता है यह इसलिए क्योंकि खला के अंदर तजमीन है, यह मुतजमीन है जावजा के माना को, या यूं कहा जाए कि यहां पर हज़्फ़ ईसाल है, मीन मौजूद था, असल में था खला मीन जैदिन, फिर मीन को हज़्फ़ करके जैद को खला के साथ जोड़ दिया गया और खला ने इसको नसब दिया, तो खला जैदन हो गया। तो कहते हैं वकद युजम मनु माना जावजा, और कभी कभार खला को मुतजमीन किया जाता है जावजा के माना के साथ, यानी इसके जिमन में जावजा का माना लाया जाता है। औ यु हज़्फ़ मीन, या मीन को हजफ कर लिया जाता है, वह यू सलुल फेलू, और फेल को मिला दिया जाता है उसके साथ, तवज्जो है, फेल को उसके साथ मिला दिया जाता है। फयतअद्दा बिनफ्सी ही, तो फेल खुद ही मुतअद्दी हो जाता है, फेल खुद ही मुतअद्दी हो जाता है उस मफूल की तरफ, यानी मफूल बिही गैर सरीह को मफूल बिही सरीह बना दिया जाता है। आगे देखिए, वल तजमू हाजत तजमीना अविल हज़्फ़ वल ईसाल फी बाबिल इस्तिस्नाई। सवाल पैदा होता है कि इस्तिस्ना के बाब में तो हम जब भी पढ़ते हैं जा अनिल कौमु खला जैदन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? खला जैदन पढ़ते हैं। तो अगर यहां हज़्फ़ ईसाल है حذف و ایصال ہے تو کبھی تو مین کو لفظوں میں بھی آنا چاہیے تھا، جان القوم خلا من زیدن، تو کبھی تو اپنی اصل پر رہنا چاہیے تھا اور کبھی حذف و ایصال کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ خلا کے بعد زیدن جو ہے وہ جو مستثنی ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی نحوی حضرات نے یہاں پر خلا کے اندر تضمین یا جو حذف و ایصال ہے اس کو لازم قرار دیا ہے، تو نحوی حضرات نے یہاں پر تضمین یا حذف و ایصال کو اس باب استثناء کے اندر لازم قرار دیا ہے۔ بھئی خلا اور عادہ استثناء کے علاوہ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب بھی یہ استثناء کے لیے استعمال ہوں گے تو نحوی حضرات کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر تضمین لازم ہے یا حذف و ایصال لازم ہے، تضمین ہوگی تو پھر یہ آگے مستثنا کو نصب دے گا، یا حذف و ایصال ہوگا تو یہ آگے مستثنا کو نصب دے گا۔ تو استثنا کے باب میں یہاں پر نحوی حضرات نے تضمین کو لازم قرار دیا ہے، بات سمجھ میں آگے۔ دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں ول تزمو حاض تزمین اول حس، اچھا تو نحوی حضرات نے یہاں پر تضمین یا حذف و ایصال کو لازم پکڑا ہے باب استثناء کے اندر۔ بھئی کیوں لازم کیوں پکڑا ہے؟ تاکہ کہتے ہیں اس کی صورت بھی مستثنا بالا جیسی ہو جائے، اس کی صورت بھی، یہ جو خلا کا ما بعد ہے اس کی صورت بھی مستثنا بالا کی طرح ہو جائے، اور مستثنا بالا تو منصوب ہوتا ہے، توجہ ہے، لہذا یہاں پر بھی نصب کو لازم پکڑا ہے۔ اگر کبھی نصب آئے گا کبھی مین آئے گا تو پھر تو اس کی صورت الا جیسی نہ رہی، الا کے بعد تو ہمیشہ کیا آئے گا، نصب آتا ہے، تو لہذا یہاں پر بھی انہوں نے نصب کو لازم پکڑا ہے، اور نصب کو لازم پکڑا ہے معلوم ہوا تضمین یا حذف و ایصال کو لازم پکڑا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو نصب نہیں آ سکتا۔ بھائی تو کہتے ہیں والتزمو، اور نحوی حضرات نے اس تضمین یا حذف و ایصال کو لازم پکڑا ہے، فی باب الاستثناء، استثناء کے باب میں، لیکون ما بعدها فی صورت المستثنا بالا، تاکہ یہ جو خلا کا جو ما بعد ہے وہ مستثنا بالا کی صورت میں ہو، التی ہی ام البابی، وہ الا جو ام الباب ہے، جو اس باب استثناء میں اصل ہے۔ ام الباب کا کیا معنی؟ یعنی باب کی جو اصل ہے، جیسے ماں اپنی اولاد کے لیے اصل ہوتی ہے، توجہ ہے، تو یہاں پر بھی الا جو ہے وہ ام الباب ہے، یہ استثناء کے باب میں اصل الا ہے۔ یاد رکھو یہ جو 11 کلمات انہوں نے آپ کو بتائے استثناء کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے صرف الا جو ہے اس کو وضع ہی استثناء کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ باقی خلا، عدا، لیسا، لا یکون وغیرہ اور سوا سوا وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کو استثناء کے لیے وضع نہیں کیا گیا، ان کو اور معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن استعمال کس میں کر لیتے ہیں کبھی کبھار، استثناء کے لیے بھی۔ تو الا وضع ہی کس لیے ہے؟ استثناء کے لیے، اور باقی استثناء کے لیے وضع نہیں ہے، وہ اور معانی کے لیے وضع ہیں لیکن استعمال ہو جاتے ہیں استثناء کے لیے بھی۔ یہ تمام کلمات جو استثناء کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں اصل کیا ہے؟ الا ہے استثناء کے لیے، وہ ہے ام الباب، اس باب کی اصل۔ تو اس کے ساتھ اس جیسی صورت دینے کے لیے خلا کے اندر تضمین یا حذف و ایصال کو لازم پکڑا ہے، تاکہ صورت بھی کس جیسی ہو؟ مستثنا بالا جیسی ہو، توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے جی۔ دیکھیے کہتے ہیں لیکون ما بعدها فی صورت المستثنا بالا التی ہی ام البابی، تاکہ یہ جو خلا کا ما بعد ہے وہ مستثنا بالا کی صورت میں ہو، وہ الا التی ہی ام البابی، جو کہ اس باب کی اصل ہے بھائی، یعنی باب استثناء کی جو اصل ہے۔ یہاں تک بات بھی سمجھ میں آئی یا نہیں؟ کیا بات ہوئی کہ الا کے بعد مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو لہذا خلا کے بعد بھی ہمیشہ کیا لاتے ہیں؟ منصوب ہی لاتے ہیں، اور منصوب لانے کی تو دو ہی صورتیں ہیں، یا اس میں تضمین ہو یا اس میں حذف و ایصال ہو۔ تو گویا جب بھی خلا کو استثناء کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں تضمین یا حذف و ایصال کو لازم سمجھا جاتا ہے، تاکہ آگے آنے والا لفظ جو ہے وہ منصوب ہو جائے اور اس کی صورت بھی مستثنا بالا جیسی ہو جائے جیسے وہ منصوب ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے وفاعلہما ضمیر راجع اما الی مصدر الفعل المقدم او الی اسم الفاعل منہ او الی بعض مطلق من المستثنی منہ. جی یہ ذرا مشکل مقام ہے, یہ اچھی طرح سمجھ لیں. بھئی اتنا تو انہوں نے بتا دیا کہ جا ان القوم خلا زیدن, یہ زیدن یہ مفعول بھی ہے, کس کے لیے؟ خلا کے لیے, تضمین کی وجہ سے یا حذف و ایصال کی وجہ سے. تو سوال پیدا ہوا خلا تو فعل ہے اور فعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل بھی چاہیے. تو فاعل کیا ہے؟ تو آپ کو بتائیں گے کہ خلا کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے. پھر یہ ضمیر کس کو راجع ہے, کس کو راجع ہے؟ تو تین احتمالات بتلائیں گے صاحب جامی. ہونا تو یہ چاہیے تھا, یاد رکھو یہ ضمیر ہوا ضمیر راجع ہونی چاہیے تھی مستثنی منہ کو. خلا زیدن وہ خالی ہیں, کس سے خالی ہیں؟ زید سے. من ذرا لے آؤ, خلا من زیدن وہ زید سے خالی ہیں. کون زید سے خالی ہیں؟ پیچھے جو مستثنی منہ تھا, وہ قوم وہ لوگ جو آئے ہیں وہ زید سے خالی ہیں, زید ان میں شامل نہیں ہے. تو یہاں خلا کے اندر ہوا ضمیر کس کو لوٹانی چاہیے؟ القوم کی طرف. لیکن القوم وہ تو اس میں جمع ہے, وہ اس میں جمع ہے. اس میں جمع کسے کہتے ہیں؟ جو جمع تو نہیں لیکن معنی جمع والا ادا کرتا ہے. قوم کا لفظ تو مفرد ہے, اس کی جمع تو اقوام آتی ہے, تو خود یہ مفرد ہے لیکن اس کا اطلاق 3 سے 10 تک ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں جمع. تو خلا کے اندر ہوا ضمیر مفرد کی ہے اور پیچھے القوم جو مستثنا منہ ہے وہ تو اس میں جمع ہے اور اس کی طرف جمع کی ضمیر لوٹانی چاہیے. تو لہذا یہ ہوا ضمیر اس کی طرف نہیں لوٹا سکتے. تو پھر یہ ہوا ضمیر کس کی طرف لوٹائیں؟ تو پھر اس میں تاویل کرتے ہیں علماء نحوی اور آپ کو بتلائیں گے کہ ایک صورت یہ ہے کہ اس خلا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ جو پیچھے فعل ذکر ہوا تھا, پیچھے کون سا فعل تھا؟ جا انل قوم, یہ جا کا جو فعل ذکر ہوا تو اس کے مصدر کی طرف یہ ہوا ضمیر راجع ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فعل مفرد ہے لیکن فعل کا معنی مرکب ہوتا ہے 3 چیزوں سے, اس کے اندر مصدر بھی ہوتا ہے, زمانہ بھی ہوتا ہے اور نسبت الی فاعل بھی ہوتی ہے. تو فعل کا معنی مرکب ہوتا ہے مصدر زمانہ اور نسبت الی الفاعل سے. تو جب فعل آ گیا تو اس کا مصدر بھی آ گیا, تو اس کی طرف ہی یہ ہوا ضمیر راجع کر دی. جا یجی او مجی ان بھائی, مجی ان یا مجی اتن بھائی, یہ اس کا مصدر ہے. جیسے قرآن میں بھی ہے اعدلو ہوا اقرب للتقوی, اعدلو تم لوگ انصاف کرو ہوا اقرب للتقوی, انصاف جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یہ ہوا ضمیر کس کی طرف راجع؟ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ عدل کو راجع ہے. کس کو؟ عدل. تو سوال پیچھے تو عدل کا کہیں ذکر نہیں, اعدلو فعل کا ذکر ہے. تو علماء جواب دیتے ہیں کہ جب فعل آ گیا تو اس کے ضمن میں اس کا مصدر بھی آ گیا, تو لہذا معنی کے اعتبار سے گویا مصدر کا ذکر ہو چکا ہے, تو یہ ہوا ضمیر اس مصدر کی طرف راجع ہے بھائی. تو یہاں پر بھی جب جا ان القوم, جب جا فعل ذکر ہوا تو اس کے ضمن میں مجیعت یا مجیعن مصدر بھی آ گیا, لہذا اس کی طرف ہوا ضمیر کو لوٹانا صحیح ہے. تو پہلی تعبیر کیا کرتے ہیں کہ خلا کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجع ہے؟ ما قبل میں جو فعل ہے اس کے مصدر کو راجع ہے. دوسری تعبیر یہ کرتے ہیں کہ خلا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ اس فعل کے مصدر کو نہیں راجع کرتے بلکہ اس فعل کے اسم فاعل کو راجع کرتے ہیں. کس کو؟ اسم فاعل. اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ وہ جو صیغہ آپ نے گردانوں میں پڑھا ہے ضرب یضرب ضربا فہوا ضارب, یہ اسم فاعل ہے. اور جب فعل ذکر ہو گیا, جب مجیعت ذکر ہو گئی, معلوم ہوا کوئی آنے والا ہے یا نہیں, معلوم ہوا کوئی جائی ہے. ذرا گردان پڑھیں, جا یجی او مجی ان فہوا جا ان, جا ان کا کیا معنی؟ آنے والا. تو جب فعل ایک ذکر ہوتا ہے تو معلوم ہوا کوئی اس فعل کو کرنے والا ہے. تو لہذا یہ ہوا ضمیر کس کو راجع کی؟ وہ جو ماقبل فعل تھا اس کے اسم فاعل کو راجع کر دی, کیونکہ جب فعل کا ذکر آیا تو معلوم ہوا کوئی اس فعل کو کرنے والا ہے, یعنی اسم فاعل کا بھی گویا ذکر ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئے؟ यानी वो समझ में आ रहा है उससे कि कोई आने वाला है, कोई इस फेल को करने वाला है। तो पहली तावील क्या कि हुआ जमीर किसको राजे, मां कबल में जो फेल है उसके मस्दर को राजे। दूसरी तावील क्या कि मां कबल में जो फेल है उसके इसमें फाइल को यह जमीर राजे है। और तीसरी तावील यह करेंगे कि यह हुआ जमीर जो माकबल में मुस्तस्ना मिनहू था उसके बाज को राजे करेंगे। किसको? उसके बाज को राजे करेंगे। भाई जब मैंने कहा जा अनिल कौम वो लोग आए, इससे क्या पता चला? वो सारे आए हैं। अभी मैंने जैद का इस्तेस्ना नहीं किया, जा अनिल कौम वो सारे आए हैं। तो गोया कुल आ गया। क्या आ गया? अल कौम से जितने भी अफराद मुराद हैं वो सब मालूम हुआ आए हैं, तो कुल का जिक्र आ गया। और जब कुल का जिक्र आता है तो उसके जिमन में बाज का भी जिक्र आता है या नहीं? मसा फर्ज करो अल कौम से 100 आदमियों की एक जमात मुराद है, हम ले लेते हैं। वैसे तो इसका इतलाक 3 से 10 तक होता है, लेकिन जायद पर भी इतलाक कर देते हैं कभी कभार। तो लिहाजा फर्ज करो ये इस कौम से कितने अफराद मुराद थे? 100 अफराद मुराद थे, जैद भी उनमें से है। तो जब मैंने कहा जा अनिल कौम वो लोग मेरे पास आए थे, मालूम हुआ कितने लोग हैं? वो 100। मालूम हुआ वो 100 के 100 मेरे पास आए हैं। जब वो 100 के 100 मेरे पास आए हैं तो उस 100 में से 10 जो हैं बाज ये वो भी मेरे पास आए हैं। अगले 10 ले लो वो भी मेरे पास आए हैं। अगले 10 मुराद ले लें वो भी मेरे पास आए हैं। जब कुल का जिक्र हो तो उसके जिक्र में बाज का भी जिक्र हो जाता है। तो लिहाजा तीसरी तावील यह है कि यह हुआ जमीर बाज की तरफ राजे करें, वो जो मुस्तस्ना मिन्हू के बाज हैं उनकी तरफ राजे कर दें। जी जरा ये अपने सामने कापियों पर लिखें भाई, ये जरा मुश्किल मकाम है, इसको अच्छी तरह समझ लें। जल्दी जल्दी लिखिए भाई। जी लिखिए भाई, जा अनी अल कौमु, बल्कि पहले पूरी मिसाल लिख लीजिए जो किताब में थी। जा अनिल कौमु आदा जईदन, जा अनिल कौमु आदा जईदन। अब इसके नीचे ये आदा की जमीर किसको राजे है वो तावीलें हम लिखेंगे। पहली तावील क्या लिखिए नीचे, जा अनिल कौमु आदा लिख लिया, जा अनिल कौमु आदा। अब हमने वो फाइल जिक्र करना है, अदा के अंदर हुआ जमीर किसको राजे। पहली तावील मैंने बताई थी मां कबल में जो फेल जिक्र है उसके मस्दर को राजे, तो मालूम हुआ फाइल कौन है? मजी उन है, आना वो फाइल है। और आना हर एक का आना जिक्र है या उस कौम का आना जिक्र है? उस कौम का आना जिक्र है, तो साथ फाइल को भी हम ले आएंगे। किसको? मजी मस्दर के साथ उसके फाइल को भी ले आएंगे। और आपको मैंने बताया था कि मस्दर की अमूमन अपने फाइल की तरफ इजाफत कर दिया करते हैं, फाइल की तरफ इजाफत कर देते हैं। मसलन देखो मैं आपसे पूछता हूं जराबा जैदुन, जैद ने पिटाई की। अब मैं आपसे पूछता हूं बताइए इस जुमले में क्या बयान हुआ, आप क्या कहेंगे? जर्ब बयान हुई, मुतलकन जर्ब या किसी खास आदमी की जर्ब? तो फिर उसको भी साथ जोड़ो, आप कहेंगे इसमें जरबू जैदीन यानी जरबे जैद बयान हुई है। देखो जरब मस्तर है और जैदीन फाइल की तरफ इसकी इजाफत कर दी, तो मस्तर की क्या करते हैं? अपने फाइल या मफूल की तरफ इजाफत कर देते हैं। तो यहां पर भी आदा के अंदर हुआ जमीर किसको राजे की? जा के मस्तर को, और मस्तर के लिए साथ फाइल को भी जिक्र कर दिया और उसकी तरफ इजाफत कर दी। तो यूं कहेंगे, लिखो भाई आगे, मजी ओहम, अगर मुश्किल है लिखना किताब पर देख लीजिए, मजी ओहम, और आगे जैदन उसी तरह लिख लीजिए। क्या लिखा? जा अनिल कौमु आदा मजी ओहम जैदन। ये मजी ओहम इसको मैं मरफू पढ़ रहा हूं, किस लिए? फाइल है खला के लिए। और ये हम जमीर मैंने साथ क्यों जोड़ी? ये मजीअत का फाइल है, वो उनका आना, उस कौम वालों का आना। तर्जमा क्या हुआ जी? खला और आदा दोनों में एक ही तरकीब होगी, बस आदा से आप समझ जाएंगे तो खला आप खुद कर सकते हैं। तो क्या लिखा? जानिल कौमु आदा मजी ओहम जैदन, और ये जैदन ये इसी आदा के लिए मफूल बिही है, क्योंकि ये मफूल बिही को नसब देता है। तो माना क्या बन गया? जा अनिल कौमु वो लोग मेरे पास आए, आदा मजी ओहम, जावजा मजी ओहम, उनका आना तजावुज कर गया, बढ़ गया जैदन, किससे? जैद से, यानी वो जैद उनके साथ नहीं आया। जानिल, फिर सुनो, जानिल कौम, वो लोग मेरे पास आए, आदा मजी उहुम, उनका आना तजावुज कर गया, उनका आना बढ़ गया, जैदन किससे? जैद से, मालूम हुआ जैद उनके साथ आने में शामिल नहीं था, यानी जैद नहीं आया। माना समझ में आ गया? दूसरी तरकीब लिखिए नीचे भाई, जानिल कौम, जानिल कौम आदा, जा अनिल कौम आदा, अल जाई मिनहुम, किताब पर भी देख लीजिए, अल जाई मिनहुम, अल जाई मिनहुम जैदन, अल जाई मिनहुम जैदन, क्या तर्जमा होगा? जा अनिल कौम, वो लोग मेरे पास आए, आदा तजावुज कर गया, अल जाई मिनहुम, उनमें से जो आने वाला था, उनमें से जो आने वाला था वो तजावुज कर गया, जैदन किससे? जैद से, यानी जैद उसके साथ नहीं आया, आने वालों के साथ जैद नहीं आया, आने वाला जैद से तजावुज कर गया, यानी वो उसके साथ शामिल ना हुआ। भाई बात समझ में आ गई? तो पहली तरकीब के मुताबिक आदा की जमीर किसको लौटाई? माकबल फेल के मस्तर की तरफ। दूसरी तरकीब के मुताबिक आदा की जमीर किसको लौटाई? माकबल के फेल से मफहूम होने वाला इसमें फाइल जो है उसकी तरफ लौटाई। तीसरी तरकीब लिखिए भाई, जा अनिल कौम आदा, जा अनिल कौम आदा, बाजुन, बाजुन मिनहुम, मिनहुम जैदन, जैदन, तवज्जो है, जा अनिल कौम, वो लोग मेरे पास आए, आदा तजावुज कर गए, बाजुम मिनहुम, उनमें से बाज, उनमें से, उनमें से बाज तजावुज कर गए, जैदन किससे? जैद से, यानी जैद उनमें से बाज के साथ नहीं आया। याद रखो, याद रखो, ये साहिब जामी आपको बतलाएंगे, बाजुम मिनहुम, यूं भी कह सकते थे बाजुहुम, क्या कह सकते थे? यूं कह देते, देखो, जा अनिल कौम आदा बाजुहुम जैदन, लेकिन साहिब जामी बाजुहुम नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? बाजुम मिनहुम। वजह क्या? वजह यह कि अगर बाजुहुम कह देते जा अनिल कौम आदा बाजुहुम, तो शुबा पड़ता कि शायद ये बाजुहुम से कोई मुतायन बाज मुराद हैं। तो तर्जमा क्या होता? जा अनिल कौम, वो लोग, तवज्जो से समझ लो, ये मुश्किल बात है, जा अनिल कौम, वो लोग मेरे पास आए थे, आदा बाजुहुम, उनमें से बाज तजावुज कर गए, जैदन किससे? जैद से, यानी जैद उनके साथ नहीं था, उनमें से बाज तजावुज कर गए, जैद से, यानी जैद उनके साथ नहीं था। तो शुबा पड़ता है बाजुहुम, यह बाज की इजाफत हुम जमीर की तरफ है, और मारिफा की तरफ जो मुजाफ हो जाए वो भी क्या बनता है? मारिफा बन जाता है। तवज्जो है, मालूम हुआ कोई बाज़े मुअय्यन मुराद हैं। क्या मुराद हैं? बाज़े मुअय्यन मुराद हैं। मसलन फर्ज कर लें, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, फर्ज करें अल कौम से कितने अफराद मुराद थे? 100 अफराद, उसमें से 25 वो भी बाज हैं, अगले 25 वो भी क्या हैं? बाज, फिर अगले 25 वो भी बाज हैं, अगले 25 वो भी बाज हैं। तो देखो, 4 बाज बन गए। आप जितने मर्जी बना लें, 10-10 के वाले बाज बना लें, 5-5 वाले बाज बना लें, जितने भी बाज बना लें, सूरत समझ में आ गई? लेकिन आसानी के लिए मसलन हम 4 बना लेते हैं, हर 25 क्या है? ये बाज है। अब अगर बाजुहुम से कोई मुतायन बाज मुराद ले लें, कोई मुतायन बाज मुराद ले लें, कि ये वाले जो 25 हैं ये जैद से खाली थे, इनमें जैद नहीं था। जा अनिल कौम, आए वो लोग मेरे पास, आदा बाजुहुम, उनमें से ये वाले बाज तजावुज कर गए थे, जैदन किससे? ये वाले बाज, वो तो मुतायन 25 हैं, यानी ये जैद को शामिल नहीं। भाई ये वाले 25 अगर जैद को शामिल नहीं, और भी तो बाज हैं, हो सकता है वो जैद को शामिल हो, हो सकता है वो जैद को शामिल हो, लिहाजा यहां बात दुरुस्त नहीं बनती भाई, क्योंकि ये इस्तिस्ना है। इस्तिस्ना किसको कहते हैं? पहले एक चीज दाखिल हो और फिर उसको क्या कर दें? खारिज कर दें। तवज्जो है, मुस्तसना मुत्तसिल की बात चल रही है, तवज्जो है, मुस्तस्ना मुत्तसिल किसे कहते हैं, जो पहले दाखिल था फिर उसको कलिमात इस्तिस्ना के जरिए निकाल लिया जाए। तो अगर आप ये कहें जा अनिल कौमु, वो लोग मेरे पास आए थे, आदा बाजुहुम, उनमें से ये वाले जो बाज थे ये तजावुज कर गए थे जैद से, यानी इनमें जैद नहीं था। तो अगर इन 25 में जैद नहीं था तो हो सकता है अगले 25 में हो या उससे अगले 25 में हो, सूरत समझ में आ गई। तो जैद का खारिज होना साबित हुआ, बात भी समझ में आ रही है कि नहीं? ये मुस्तस्ना मुत्तसिल है, यानी जैद पहले दाखिल था फिर इसको खला के जरिए क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। और आप क्या कह रहे हैं कि जानिल कौम, वो लोग मेरे पास आए थे, आदा बाजुहुम, उनमें से ये वाले जो बाज हैं, मुतायन बाज, कोई एक 25 जो मसलन एक बाज जो हिस्सा है, इनमें जैद नहीं था, इनमें नहीं था। भाई हो सकता है इनमें अगर नहीं है तो बाकी भी तो बाज हैं, हो तो वो हो सकता है किसी और में शामिल हो। तुम बाज मुतायन से जैद की नफी करने से ये लाजिम नहीं आता कि बाकियों से भी क्या हो जाए, जैद की नफी हो जाए। तवज्जो है, लिहाजा इसीलिए साहिब जामी बाजुहुम नहीं लाए, क्योंकि बाजुहुम से क्या शुबा पड़ता था कि बाज मुअय्यन मुराद हैं, और बाज मुअय्यन से जैद की नफी कर दो तो इससे बाकी बाज से जैद की नफी लाजिम नहीं आती। तवज्जो है, तो इसीलिए साहिब जामी बताएंगे कि बाज मुअय्यन यहां नहीं मुराद, बाज मुतलक मुराद हैं। क्या मुराद है? बाज मुतलक, मुतलक जो भी बाज आप निकाल लो, चाहे पहले वाले 25 पकड़ लें, ये भी बाज हैं, उसमें से इसमें भी जैद नहीं है, ये भी जैद से तजावुज कर गए। दूसरे वाले बाज पकड़ लो अगले 25, वो भी क्या है, जैद से तजावुज कर गए, जैद उनमें भी नहीं। उससे अगले 25 देख लें, वो भी जैद से तजावुज कर गए, उनमें भी जैद नहीं। चौथी किस्म देख लें, चौथे बाज देख लें, उनमें भी जैद दाखिल नहीं। तो यहां बाज मुअय्यन मुराद लेंगे या मुतलक बाज मुराद लेंगे? मुतलक बाज। तवज्जो है, नई बात समझ में आई, यह है मुस्तस्ना मुत्तसिल। मुस्तस्ना मुत्तसिल किसे कहते हैं कि जो मुस्तस्ना है उसको माकबल से निकाल दिया गया है। माकबल में एक कौम के आने का जिक्र है और आगे है खला जैदन, मालूम हुआ जैद नहीं आया, बाकी लोग आए हैं, जैद नहीं आया। तो अगर ये खला की जमीर आप बाज मुअय्यन को लौटा दें, बाज मुअय्यन को, कि वो जो 100 में से ये वाले जो 25 मुअय्यन हैं, ये बाज इनमें जैद शामिल नहीं था, इनके अंदर अगर जैद शामिल नहीं था तो हो सकता है बाकियों में क्या हो, किसी के अंदर जैद शामिल हो। बात समझ भी आ गई कि नहीं? समझ में आ गई है कि बाज मुअय्यन से अगर जैद की नफी कर दें तो बाकी जो बाज हैं उनसे तो जैद की नफी नहीं हुई। आप क्या कहना चाहते थे कि बाज जैद से तजावुज कर गए, यानी जैद उनमें शामिल नहीं है जी। तो जैद को पूरी कौम से निकालना है या सिर्फ बाज से निकालना है? जानिल कौमु खला जैदन, जैद सिर्फ बाज में दाखिल नहीं है या सारी कौम में दाखिल नहीं है यहां पर आने के अंदर? हां, सारी कौम आई है लेकिन जैद दाखिल नहीं, वो नहीं आया साथ, लिहाजा हर बाज से उसकी नफी होनी चाहिए। सिर्फ बाज मुअय्यन से जैद की नफी नहीं चाहिए कि उनमें जैद शामिल नहीं है, बल्कि हर बाज में से जैद की नफी होनी चाहिए कि ये वाले बाज भी आए हैं, ये भी आए हैं, ये भी आए हैं, ये भी आए हैं, लेकिन जैद किसी में भी शामिल नहीं, वो नहीं आया। तवज्जो है, अगर आप बाजुहुम से बाज मुअय्यन मुराद लेंगे तो उनमें तो जैद शामिल नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है बाकियों में शामिल हो। लेकिन मकसद आपके कहने का क्या है कि जैद किसी में भी शामिल नहीं है, जैद आया ही नहीं है, बाकी सारे बाज आए हैं लेकिन जैद नहीं आया। तो इसकी यही सूरत है कि बाज से बाज मुअय्यन मुराद न लें बल्कि बाज मुतलक मुराद लें, कोई से आप बाज ले लें। ये कौन से मुराद 100 अफराद हैं, आप जौन से मर्जी बाज इनमें पकड़ लें, उनमें जैद नहीं होगा। ये बाज तो आए हैं लेकिन जैद नहीं आया, वो इनके अंदर दाखिल नहीं है भाई, उसका इस्तिस्ना किया जा रहा है। बात समझ में आ गई जी? लिख लिया जी। क्या लिखा? हाँ, जा अनिल कौम आदा बाजुम मिन हुम जैदन, आए मेरे पास वो लोग के तजावुज कर गए उनमें से बाज मुतलक जैद से, यानी जैद नहीं आया। ये तो था आदा के साथ, इसी की मैं आदा की जगह अगर आप खला ले आए, क्या ले आए? जा अनिल कौमु खला मजी उहम जैदन, जा अनिल कौमु खलल जाई मिन हुम जैदन, جَعَنِ الْقَوْمُ خَلَا بَعْضٌ مِّنْهُمْ زَيْدًا, معنی وہی ہوگا, کیونکہ خلا کا معنی یہاں کیا کرنا ہے, تجاوز کرنا, کہ وہ تجاوز کر گئے تھے, وہی عدا والا ترجمہ کرنا ہے. یا خلا کا اردو کے اعتبار سے آپ چاہے خلا خالی ہونے کا بھی معنی کر لیں. جَعَنِ الْقَوْمُ, وہ لوگ میرے پاس آئے تھے, خلا مجیئهم زیدن, ان کا آنا زید سے خالی تھا. یا خلل جائی منہم زیدن, ان میں سے آنے والا زید سے خالی تھا. یا خلا بعض منہم زیدن, ان میں سے بعض مطلق جو ہیں وہ زید سے خالی ہیں, کوئی بھی بعض آپ دیکھ لیں زید ان میں شامل نہیں, وہ نہیں آیا ہے, باقی سب آئے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں وفاعلہما ضمیر راجع, اور ان کے اندر فاعل جو ہے وہ ایسی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے, اما الى مصدر الفعل المقدم, یا تو فعل مقدم کے مصدر کی طرف, او الى اسم الفاعل منه, یا اسی فعل سے اسم فاعل جو ہے اس کی طرف. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے, وہ ضمیر اس کو لوٹ رہی ہے. او الى بعض مطلق من المستثنى منه, یا مستثنى منه میں سے بعض مطلق کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے, بعض مطلق کی طرف. بھائی دیکھو, بتلانا مقصد یہ ہے کہ وہ ساری قوم آئی ہے لیکن زید نہیں آیا. مسئلہ صرف یہ پیش آ رہا ہے کہ خلا کے اندر ہوا ضمیر مفرد کی ہے, وہ القوم کی طرف ہم راجع نہیں کر سکتے. القوم کل ہے, تو کل کے اندر کیا آ جاتا ہے, بعض, بعض بھی آ گئے, تو لہذا ہم یہ ہوا ضمیر بعض کی طرف راجع کریں گے, اور کوئی بعض معین نہیں مراد لیں گے, مطلق بعض. آپ جو بھی بعض اس میں سے لیں گے وہ زید سے خالی ہے, زید ان میں شامل نہیں آنے کے اندر. بھائی تو یہ معنی ہے او الى بعض مطلق من المستثنى منه, یا یہ ضمیر راجع ہے مستثنى منه میں سے بعض مطلق کی طرف. والتقدیر, اور تقدیر کلام یوں ہے, جاء ان القوم عدا او خلا. دیکھو عدا یا خلا دونوں میں سے ایک کو لے آئیں, آگے خلا مجیئهم خالی ہے ان کا آنا. دیکھو یہ پہلی صورت, زید کو آخر میں ایک ہی دفعہ ذکر کریں گے, آگے ہے اویل جا ای مین ہوم ای خلل جا ای مین ہوم, خالی ہے ان میں سے آنے والا زیدن, یعنی زید سے. او بعض مین ہوم زیدن, یا خالی ہے ان میں سے بعض زید سے. عبارت سمجھ میں آ گئی. اچھا بھائی, الگ صفحے پر ایک اور نقشہ بنا لیں. یہ نقشہ پہلے بھی کچھ آپ نے لکھ لیا ہے لیکن ذرا اور وضاحت ہو جائے گی, ذرا اس کو الگ صفحے پر بنائیے بھائی. جی سب سے پہلے لکھئے جا ان القوم خلا زیدن, جا ان القوم خلا زیدن. شروع میں اس کے ایک نمبر دے دیجئے, یہ پہلی مثال ہے جو کتاب میں دی گئی ہے. پہلی مثال ہے جا ان القوم خلا زیدن, بعید شروع میں ایک نمبر لکھ لیجئے. جی اب اس کے نیچے لکھئے جا ان القوم, جا ان القوم خلا. اب ہم وہ فاعل لائیں گے. خلا کی ضمیر کے اندر تین احتمال انہوں نے ذکر کیے کہ یہ ضمیر یا تو بعض مطلق کو راجع ہے, یا ماقبل فیل جو جا فیل ذکر ہے اس کے مصدر یعنی مجیعت کو راجع کریں گے, اور تیسری صورت یہ ہے کہ اسی ماقبل کے فیل سے جو اس میں فاعل ہے یعنی الجائی اس کی طرف ضمیر راجع کریں گے. جی تو کیا لکھا آپ نے, جا ان القوم خلا بعضهم من زید, بعضهم من زید. یہ اب ہم نے پوری عبارت کھول لی بھائی, فاعل کو بھی لے آئے, اور خلا زیدن تھا, وہاں زیدن منصوب تھا تضمین کی وجہ سے یا حذف ایصال کی وجہ سے, اب ہم نے اس کو یہاں ذکر کر دیا. تو کیا لکھا, جا ان القوم خلا بعضهم من زیدن, وہ لوگ میرے پاس آئے اس حال میں کہ خالی تھے ان میں سے بعض مطلق من زیدن, زید سے. توجہ ہے, تو صاحب جامی نے تو بعض منهم ذکر کیا تھا, بعضم من ہم ذکر کیا تاکہ بعض معین کا شبہ نہ پڑے بھائی, بعض ان کو ہم کے ضمیر کے ساتھ نہیں جوڑا بھائی, اس کو نکیرا رکھا. لیکن بہرحال اگر اضافت بھی کر دیں اور مراد کیا لیں بعض مطلق, پھر بھی بات صحیح ہے. یا اسی طرح لکھ لیں جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے, بعض ہم لکھ لیں یا بعض من ہم لکھ لیں, جعن القوم خلا بعضهم من زید، یا یوں لکھ لیں جعن القوم خلا بعض منهم من زید، معنی ایک ہی ہے، وہ لوگ میرے پاس آئے اس حال میں کہ ان میں سے بعض مطلق جو تھے وہ زید سے خالی تھے. اس سے نیچے بھائی اب ہم بعض کے بجائے مجیئت کو فاعل بنائیں گے. نیچے لکھئے جعن القوم، جعن القوم خلا مجیئهم، خلا مجیئهم من زید، من زید جعن القوم خلا مجیئهم من زید، وہ لوگ میرے پاس آئے اس حال میں کہ ان کا آنا خالی تھا من زید، زید سے، یعنی زید ساتھ نہیں آیا. اب ہم فاعل بنائیں گے الجائی منہم کو، تو نچلی سطر میں لکھئے جعن القوم، جعن القوم، جعن القوم خلا، خلا الجائی منہم، الجائی منہم من زید، من زید لکھ لیا. جعن القوم خلا الجائی منہم من زید، وہ لوگ میرے پاس آئے اس حال میں کہ ان میں سے آنے والا خالی تھا زید سے، یعنی ان کے ساتھ زید نہیں آیا. یہ پہلی مثال تھی. اب دوسری مثال کو بھی اسی طرح حل کر لیتے ہیں. تو نیچے دو نمبر لکھئے بھائی اور دوسری مثال لکھئے. جعن القوم عدا زیدن، جعن القوم عدا زیدن. اب معنی بیان کرنے کے لیے اس سے نیچے اب ہم عدا کی جگہ جاوزا کا فعل لے آئیں گے تاکہ معنی واضح ہو جائے. تو نیچے لکھئے جعن القوم، جعن القوم جاوزا زیدن، جاوزا زیدن لکھ لیا. اب جاوزا یہ فعل ہے اور اس کے اندر ضمیر ہے جو ماقبل کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس میں تین احتمال ہیں. تو اب ہم وہ تینوں احتمال، یعنی وہ تینوں صورتیں فاعل کی ہم ذکر کریں گے. تو نچلی سطر میں لکھئے جعن القوم، جعن القوم جاوز بعض منهم، جاوز بعض منهم زیدن، زیدن جعن القوم جاوز بعض منهم زیدن، وہ لوگ میرے پاس آئے اس حال میں کہ تجاوز کیا ان میں سے بعض مطلق نے زیدن، زید سے. اب اس سے نچلی سطر میں بعض منہم کی جگہ ہم مجیئہم کو فاعل بنائیں گے. تو اب نیچے لکھئے جعن القوم، جعن القوم جاوز مجیئہم، جاوز مجیئہم زیدن، جاوز مجیئہم زیدن لکھ لیا بھائی. جعن القوم جاوز مجیئہم زیدن، جعن القوم وہ لوگ میرے پاس آئے جاوز مجیئہم زیدن اس حال میں کہ ان کا آنا تجاوز کر گیا زید سے، یعنی زید ان کے ساتھ شامل نہیں تھا. اب ہم فاعل بنائیں گے الجائی منہم کو. تو نیچے لکھئے جعن القوم، جعن القوم جاوز، جاوز الجائی منہم، الجائی منہم زیدن، زیدن جعن القوم جاوز الجائی منہم زیدن، وہ لوگ میرے پاس آئے اس حال میں کہ جاوز الجائی منہم زیدن کہ ان میں سے آنے والے نے تجاوز کیا زید سے، یعنی ان کے ساتھ زید نہیں تھا، کوئی بھی آنے والا تھا، کوئی بھی مطلق آنے والا کوئی بھی تھا ان میں سے، وہ زید سے تجاوز کرنے والا تھا، یعنی زید ان کے ساتھ شامل نہیں تھا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. اب اس دیکھیں نقشے کے اندر تمام صورتیں آ گئیں اور خلا اور عدا دونوں مثالوں کو ہم نے حل کر لیا. بھائی تو حاصل کلام پھر سمجھ لیں. بھائی حاصل کلام یہ جو یہاں انہوں نے ترکیب ذکر کی نا کہ یہ जा अनिल कौमु खला जैदन और जा अनिल कौमु अदा जैदन, ये खला और अदा के अंदर जो फाइल की जमीर है वो मुस्तस्ना मिनहू को हम राजे करना चाहते हैं, लेकिन मुस्तस्ना मिनहू अल कौम वो तो इसमें जमा है और इसमें जमा माना के एतबार से जमा है, लफ्जों के एतबार से मुफरत लेकिन माना के एतबार से जमा है, तो उसकी तरफ जमा की जमीर लौटा सकते हैं, मुफरत की जमीर उसकी तरफ नहीं लौट सकती। तो फिर उलमाए नहव तावील करते हैं कि जमीर लौटानी उसी कौम की तरफ है, लेकिन तावील करके अब लौटाएंगे किसकी तरफ, तावील करके कौम की तरफ लौटाएंगे, और तावील क्या करेंगे कि इस जमीर को माकबल में जो फेल आया है उसके मस्तर की तरफ लौटा देंगे, उनके मस्दर की तरफ लौटा देंगे। और फेल का माना मुरक्कब होता है मस्दर जमाना और निस्बत इलल फाइल से, तो माकबल में माना के एतबार से मस्दर हो आ चुका है, लिहाजा उसकी तरफ ये जमीर लौटा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि गायब की जमीर के लिए मर्जे चाहिए, वो मर्जे कभी लफ्जों के एतबार से मुकदम होता है, कभी माना के एतबार से मुकदम होता है, और कभी हुक्मन मुकदम होता है। यहां पर यह खला की जमीर माकबल फेल के मस्दर की तरफ लौटा दी और वह मस्दर जो है वह लफ्जन तो मुकदम नहीं लेकिन मानन मुकदम हो चुका जा के जिमन में, जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इअदिलु हुआ अकरबुल तकवा, तो यह हुआ जमीर अदल की तरफ राजे है जो इअदिलु के जिमन में मानन मुकदम हो चुका है। बात समझ में आ गई, तो देखो कलाम क्या बन गया, जानिल कौमु खला मजीउहुम जैदन, आए मेरे पास वो लोग कि खाली है मजीउहुम उनका आना जैदन, किससे, जैद से। अब देखो तवज्जो है, मकसद क्या है यहां पर, मकसद यहां यह है कि यह मुस्तस्ना मुत्तसिल है और जैद को हमने माकबल से निकालना है, वो मुखरज होना चाहिए, तवज्जो है, तो माकबल से मुखरज होना चाहिए, और लिहाजा ये अब ये खला की जमीर हम किसको लौटा रहे हैं, ये जमीर तो हमने लौटानी थी मुस्तस्ना मिनहू को, लेकिन मुस्तस्ना मिनहू की तरफ ये जमीर नहीं लौट सकती, तो याद रखो अब भी हम जमीर मुस्तस्ना मिनहू को ही लौटाएंगे लेकिन तावील कर लेंगे थोड़ी सी, क्या कर लेंगे, मकसूद वही मुस्तस्ना मिनहू है लेकिन हम तावील कर रहे हैं कि अल कौम की तरफ जमीर नहीं लौटाई बल्कि मजी उल कौम की तरफ लौटा दी। जा अनिल कौमु खला मजी उहुम, यह हम जमीर किसको राजे है, उसी अल कौम को राजे है, तो गोया जमीर मजी उल कौम को लौटा दी, किसको लौटा दी, मजी उल कौम, बतलाना क्या मकसद था कि जैद उनके साथ नहीं आया, तो जब यह कह दिया कि जा अनिल कौमु वो लोग आए खला मजी उहुम जैदन लेकिन उनका आना खाली है जैद से, जब उनका आना खाली है जैद से मालूम हुआ वो भी खाली हैं जैद से, बात समझ में आ रही है, तो जमीर हमने मुस्तस्ना मिनहू को लौटानी है लेकिन लौटाएंगे तावीलन भाई, क्योंकि सीधी जमीर नहीं लौटा सकती क्योंकि वो इसमें जमा है भाई, तो उनका आना जब खाली है मालूम हुआ वो भी जैद से खाली हैं भाई जिस वक्त वो आए भाई। दूसरी तावील ये है कि उसी जा से अलजाई, इसमें फाइल जो है मफहूम हो रहा है, जब जा का फेल पीछे आ गया मालूम हुआ कोई आने वाला है, कोई जाई है, जाई आने वाला इसमें फाइल है, जब जा का फेल हुआ है पीछे जिक्र हो गया तो मालूम हुआ कोई ना कोई जाई है। अब देखो हम अब जाई की तावील में ये जमीर लौटाएंगे उस मुस्तस्ना मिनहू की तरफ, जमीर किसको लौटानी है, मुस्तस्ना मिनहू को, लेकिन जाई की तावील में, और यूं कहेंगे जा अनिल कौमु खलल जाई मिनहुम, कि उनमें से जो आने वाला है वो खाली है जैदन, किससे, जैद से वो खाली है, तवज्जो है। अब देखो जब उनमें से आने वाला जैद से खाली है और आने वाले तो कौन है, वही कौम वाले हैं, तो मालूम हुआ उनमें जैद शामिल नहीं, तो देखो जमीर हमने फिर भी किसकी तरफ लौटाई, कौम की तरफ, लेकिन जाई की तावील में, कि आने वाले जो हैं अल जाई मिनहुम, उनमें से जो आने वाले हैं, पहले भी हमने जमीर कौम की तरफ लौटाई थी मजी उहुम उनका जो आना है, तो जब उनमें से आने वाला जैद से खाली है, कोई भी आने वाला हो जब वो जैद से खाली है मालूम हुआ जैद उनमें से किसी के साथ भी नहीं आया। तीसरी सूरत ये है कि ये जो जमीर है जो माकबल में मुस्तस्ना मिनहू था वो था कुल, मसलन वो कौम से यहां 100 अफराद मुराद ले लें या 50 ले लें, जितने भी अफराद मुराद हैं जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो उसके मुतलक बास की तरफ ये जमीर लौटा दें, क्योंकि जब अल कौम कुल का जिक्र हुआ तो कुल के अंदर बास का भी जिक्र हो गया, मसलन मैंने कहा जा अनिल कौम, वो लोग मेरे पास आए हैं, यानी वो मसलन 100 अफराद हैं, जब वो 100 मेरे पास आए हैं तो इस 100 के बाद यानी 10 जो हैं इसमें से वो भी आए हैं, अगले 10 जो हैं जो इसका और बाज है वो भी आए हैं, अगला बाज इसमें से कोई 10 ले लो, 20 ले लो, 30 जो भी लेना बाज चल लेना चाहते हैं वो भी आए हैं, तवज्जो है, तो इसके बाज की तरफ लौटा दो इस जमीर को। लेकिन फिर इस पर इश्काल होता है कि अगर आप इसके बाज की तरफ जमीर लौटाएंगे तो फिर तो बाज मुअय्यन मुराद होंगे, जा अनिल कौमु खला बाज़ुहुम, उनमें से बाज खाली हैं, इस बाज़ुहुम में बाज की इजाफत हो रही है हम जमीर की तरफ, और जमीर है मारिफा, और जिस लफ्ज की इजाफत मारिफा की तरफ हो जाए वो भी क्या बन जाता है मारिफा, मालूम हुआ बाज मुअय्यन उनमें से मुराद हैं। मसलन उन 100 में से ये वाले 25 मुराद हैं, ये वाले तो कहते हैं इस सूरत में तो खराबी लाजिम आएगी, आपके कहने का मतलब यह हो जाएगा जा अनिल कौम वो लोग आए, खाला बाजुहुम और उनमें से ये वाले जो 25 हैं ये खाली हैं जैदन, किससे जैद से, तो इन 25 में जैद नहीं है, इससे ये तो नहीं लाजिम आता कि बाकियों के अंदर भी जैद नहीं है। हालांकि मकसद क्या था यहां बतलाना, जा अनिल कौम खला जैदन जो आपने कहा था मकसद क्या था कि बाकी लोग आए हैं लेकिन जैद नहीं आया, आप बताना चाहते हैं जैद आने में उनके साथ शरीक नहीं था, वो नहीं आया है, तो अगर आप ये खला की जमीर किसको लौटा दें, बाज मुअय्यन को लौटा दें, तो इससे तो सिर्फ इतना पता चलेगा कि उन बाज ये वाले जो 25 है ये वाले जो 10 हैं इनमें जैद नहीं था, लेकिन इससे ये तो नहीं लाजिम आया कि बाकियों में भी जैद नहीं था, और आप तो ये बतलाना चाहते हैं कि बाकी भी किसी के साथ जैद नहीं है, लिहाजा बाज मुअय्यन की तरफ ये हुआ जमीर न लौटाओ बल्कि बाज मुतलक की तरफ यह जमीर लौटा दो, कोई से बाज आप पकड़ लें, आप उन 100 में से जो उनसे भी बाज निकाल कर देखेंगे उसमें जैद नहीं होगा, मसलन आपने पहले 10 देखे उनमें भी जैद नहीं, उसके बाद कोई और बाज मसलन अगले 15 देखे उसमें भी जैद नहीं, उसके बाद आपने अगले 25 देखे उसमें भी जैद नहीं, आप जो उनसे भी बाज निकाल लेंगे 100 में से किसी के अंदर भी जैद शामिल नहीं। अब बात ठीक बन गई, आप भी यही कहना चाहते थे कि इस कौम के आने में जैद इनके साथ नहीं था, तो जो भी बाज मुतलक इसमें से मुराद ले लें जैद उनमें शामिल नहीं आने के अंदर, तो बाज मुअय्यन की तरफ ये जमीर नहीं लौटाएंगे बल्कि बाज मुतलक की तरफ ये जमीर लौटाएंगे, और इसीलिए साहिब जामी ने बाजुम मिनहुम कहा, क्या कहा, अगर वो बाजुहुम कहते तो शुबा पड़ता शायद बाज मुअय्यन मुराद है, लेकिन जब बाजुम मिनहुम बाजुम को नकेरा लाए, बाजुम को नकेरा लाए, हुम जमीर की तरफ इजाफत नहीं की, इससे पता चल गया कि कोई से बाज मुराद हैं, मुतलक बाज मुराद हैं, कोई मुतायन मुराद नहीं, और इससे आपका मकसद हासिल हो गया कि कोई भी बाज आप देख लेंगे उसमें जैद नहीं होगा, मालूम हुआ वो सारे तो आए हैं लेकिन जैद नहीं आया। बात समझ में आ गई, तो हासिल कलाम क्या हुआ कि जमीर हमने मुस्तस्ना मिनहू को राजे करनी है, लेकिन बराह रास्त राजे नहीं कर सकते क्योंकि वो माना के एतबार से जमा है, जमा है, तो फिर उसकी तरफ जमीर तावील करके लौटाएंगे कि खाली है उनका आना, किनका आना, उस कौम का आना, देखा उनकी तरफ जमीर लौट गई लेकिन मजीद की इजाफत के साथ उसकी तरफ लौटाई जमीर, उनका आना खाली है जैद से, मालूम हो जैद नहीं आया, या उनमें से आने वाला जो है वो खाली है जैद से, इनमें जो भी आने वाला है वो जैद से खाली है, देखो इससे भी हमारा मसला हल हो गया, या यूं कहें कि उनमें से कोई से बाज देख लें वो जैद से खाली है, देखो इससे भी मसला हल हो गया। बात समझ में आ गई, वहुमा फी महल नस्ब अलल हालियति, और ये दोनों महल्ले नसब में है हाल होने की वजह से, ये जो खला और आदा तरकीब में आए, जा अनिल कौमो खला जैदन या आदा जैदन, ये खला जैदन, खला फेल हुआ जमीर फाइल और जैदन मफूल बिही, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर ये हाल होगा माकबल में मुस्तस्ना मिनहू से, ये हाल होगा किससे, मुस्तस्ना मिनहू से, तो ये मालूम हुआ ये जो खला जैदन ये पूरा जुमला महलन मंसूब है, क्योंकि जुमला मबनियात में से है, तो ये महलन मंसूब क्योंकि हाल मंसूबात में से है, तरकीब समझ में आ रही है। तो कहते हैं वह माफी महल नस्ब अल हालियती, और ये दोनों फेल जो हैं खला और आदा ये महल नसब में हैं, अल हालियती हाल होने की वजह से। वलम यज़हर माहुमा कद, अच्छा भाई याद रखो ये जो माजी है ना, माजी जब भी हाल वाके हो तो वहां कद का होना जरूरी है, या लफ्जन होगा या तकदीरन होगा। तो खला जैदन ये पूरा जुमला क्या बन रहा है, हाल, और खला कौन सा सीगा है, माजी का, तो उसके साथ कद जरूरी, कद खला जैदन होना चाहिए, कद आदा जैदन होना चाहिए। तो कद को क्यों नहीं जिक्र किया, तो आपको बतलाएंगे कि भाई कद को भी इसीलिए जिक्र नहीं किया ताकि ये इल्ला के मुशाबे हो जाए, इल्ला के भाई जा अनिल कौम इल्ला जैदन, यहां इल्ला के साथ कद है, इल्ला के साथ कद नहीं, इसीलिए खला और आदा के साथ भी कद को जिक्र नहीं किया, यानी वो तकदीरन मौजूद है। क्यों नहीं जिक्र किया, ताकि इसकी मुशाबहत किसके साथ आ जाए, इल्ला के साथ इनकी मुशाबहत पूरी तरह हो जाए। वजह यह कि अगर कद जिक्र कर देते तो कद से पता चलता कि आदा और खला फेल हैं, और इल्ला तो हर्फ है, तो इल्ला हर्फ है और उनके साथ फेल की अलामत आ गई तो दोनों में मुशाबहत खत्म हो जाती, लिहाजा कद को क्या कर दिया, हजफ कर दिया, वो तकदीरन मौजूद है। जब कद नहीं है तो अब इनकी मुशाबहत इल्ला के साथ है भाई। तो कहते हैं वल्लम यज़हर माहुमा कद, और जाहिर नहीं हुआ इनके साथ कद, लियकू ना अशबह भी इल्ला, ताकि मुशाबे हो जाए इल्ला के साथ, अल्लती ही अल असलुफी बाबिल इस्तिस्नाई, वो इल्ला जो बाब इस्तिस्ना के अंदर असल है भाई। एक और बात याद रखें, देखो यहां उलमाए नहव ने तीन चीजें लाजिम करार दी हैं, जा अनिल कौमु खला जैदन, जा अनिल कौमु अदा जैदन, ये चूंकि इस्तिस्ना के लिए आए हैं और इस्तिस्ना के लिए असल तो क्या है, इल्ला, तो यहां इनकी मुशाबहत किससे हो गई, इल्ला के साथ, वो भी इस्तिस्ना के लिए आता है, ये भी किस लिए आ गए, इस्तिस्ना के लिए। तो लिहाजा यहां पर तीन चीजों को लाजिम पकड़ा, एक तो यह कि खला और आदा के बाद हमेशा मंसूब आएगा, मिन वगैरह को जिक्र करना जायज नहीं, जैसे इल्ला के बाद हमेशा मंसूब आता है। दूसरा यह कि खला और आदा के साथ कद को जिक्र नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि इल्ला के साथ भी कद जिक्र नहीं है, कद जिक्र नहीं है। और नीज तीसरा यह कि खला और आदा ये तो फेल है और फेल में गर्दान होती है, लेकिन यहां हमेशा पहला ही सीगा इस्तेमाल होगा, यानी खला और आदा पहला सीगा इस्तेमाल होगा, चाहे माकबल में मुस्तस्ना मिनहू तस्निया हो, जमा हो, जो भी हो, लेकिन यहां क्या आएगा, खला और आदा मुफरद ही आएंगे, यानी इनके अंदर मुफरद ही की जमीर लाजमी रखेंगे। तवज्जो है, ताकि इसकी मुशाबहत हो किसके साथ, इल्ला के साथ, क्योंकि अगर आप खला और आदा को तस्निया या जमा वगैरह बनाएंगे तो फिर तो मालूम हुआ कि इनमें गर्दान होती है, और इल्ला के अंदर तो गर्दान नहीं होती, तो मुशाबहत खत्म हो जाएगी। लिहाजा यहां मुशाबहत के लिए जरूरी है कि खला और आदा को क्या रखेंगे, मुफरद रखेंगे। और नीज खला और आदा तो फेल हैं, फेल का फाइल कभी जमीर आती है, कभी इसमें जाहिर आता है, जराबा जैदुन, ये जैदुन इसमें जाहिर जराबा के लिए फाइल है, और जब जैदुन फाइल है तो जराबा के अंदर हुआ जमीर नहीं, क्योंकि फाइल एक ही आता है, या जमीर आती है या इसमें जाहिर, मालूम हुआ फेल जमीर को भी रफा दे सकता है और इसमें जाहिर को भी। लेकिन ये खला और आदा जब भी इस्तिस्ना के लिए आएंगे तो इनका फाइल हमेशा जमीर ही होगी, आगे इसमें जाहिर नहीं लाएंगे भाई, क्योंकि अगर आगे इसमें जाहिर आ गया तो वो तो मरफू होगा, फाइल होगा, और आगे वो जो मंसूब है वो दूर चला जाएगा, और इल्ला के फौरन बाद मंसूब होता है या दरमियान में कोई और लफ्ज होता है, इल्ला के फौरन बाद मंसूब आता है, तो लिहाजा यहां पर भी क्या किया कि इनके फौरन बाद मंसूब आना चाहिए, फाइल को इसमें जाहिर लाने की गुंजाइश नहीं है। तो कितनी चीजों को लाजिम पकड़ा है यहां खला और आदा में नहवियों ने, जी तीन चीजें कह लें या चार कह लें, एक तो यह कि खला के अंदर तजमीन या हस्फ ईसाल लाजिम है, और यह खला आदा दोनों के अंदर इनके साथ कद को जिक्र नहीं किया जाता, और इसी तरह इनका फाइल हमेशा इनके अंदर जमीर आएगी, इसमें जाहिर नहीं आएगा, और नीस ये हमेशा मुफरद यानी पहला ही सीगा रहेंगे, आगे तस्निया या जमा वगैरह के सीगे यहां इस्तेमाल नहीं होंगे इस्तेसना के अंदर। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, कहते हैं फिल अक्सरी इन नस्बु बिहिमा इन्नमा हुआ फी अक्सरिल इस्तेमालाती। फिल अक्सरी, अक्सर से क्या मुराद है? आपको बतला रहे हैं कि अक्सर से मुराद अक्सर इस्तेमालात हैं, यानी खला और आदा के बाद मुस्तस्ना वजूबन मंसूब होगा अक्सर इस्तेमालात में, यानी अरब अक्सर इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। हां कभी कभार जर भी इनके जरिए लाते हैं लेकिन वो कम है, नसब कसीर है। तो कहते हैं फिल अक्सरी अई नस्ब बिहिमा, यानी इन दोनों के जरिए नसब जो है इन नमा हुआ फी अक्सर इस्तेमालात, वो अक्सर इस्तेमालात में है। लिअन्नहुमा फिअलानि माज़ियानि कमा अरफ्ता, इसलिए क्योंकि ये दोनों फेले माजी हैं जैसे कि आपने जान लिया। वकद उजीज अल जर बिहिमा, और तहकीक इनके जरिए जर भी जायज करार दिया गया है। अला अन्नहुमा हरफा जर्रिन, हरफा जर्रिन असल में था हरफानी, नून इजाफत की वजह से गिर गया। अला अन्नहुमा हरफा जर्रिन, बिनाबर इसके, ये यूं कहें इस वजह से कि ये हरफे जर हैं। भाई ये हरफे जर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और अपने मां बाप को कभी कभार जर भी देते हैं लेकिन वो कलील है भाई। तो कहते हैं वकद उजीज अल जर्रु बिहिमा अला अन्नहुमा हरफा जर्रिन, और इनके जरिए जर को भी जायज करार दिया गया है बवजह इसके कि ये दोनों हरफे जर हैं। काल सीराफी, इमाम सीराफी फरमाते हैं लम आलम खिलाफन फी जवाज इल जर्री बिहिमा, मैं इख्तिलाफ नहीं जानता इनके जरिए जर के जवाज में, यानी इन दोनों के जरिए खला और आदा के जरिए जर भी जायज है, ये हरफे जर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और इसमें मैं इख्तिलाफ नहीं जानता, यानी किसी नहवी आलिम ने इस बात से इख्तिलाफ नहीं किया, सबके नजदीक इनके जरिए जर जायज है भाई। तो काल सीराफी, इमाम सीराफी फरमाते हैं लम आलम खिलाफन फी जवाजिल जर्री बिहिमा, कि इनके जरिए जर के जायज होने में मैं इख्तिलाफ को नहीं जानता। इल्ला अन्न नस्ब बिहिमा अक्सर, मगर यह कि इनके जरिए नसब जो है वो अक्सर होता है। बात समझ में आ गई, मसला समझ में आ गया जी। यहां इमाम सीराफी का जिक्र आया, याद रखिए ये इमाम अबू सईद सीराफी हैं और ये ईरान के अंदर सीराफ मकाम में इनकी पैदाइश हुई थी, इसलिए इनको सीराफी कहते हैं, और ये बे इंतहा जहीन व फतीन और बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं भाई। इनकी पैदाइश हुई है 284 हिजरी में और वफात हुई है 368 हिजरी में। 284 में पैदाइश और 368 हिजरी में इनकी वफात हुई है, और उलमा फरमाते हैं कि ये बड़े मुत्तकी और जाहिद और परहेजगार थे भाई, और किताबत के जरिए पैसे कमाते थे, किताबत के जरिए पैसे कमाते थे, हर रोज थोड़ी सी किताबत वगैरह फरमाते और उनको बेचकर पैसे कमाया करते थे। और ये हनफी हैं भाई, हनफी, हनफी मजहब के, और काजी गुजरे हैं बगदाद के अंदर, ये 50 साल तक काजी रहे भाई, और इतने जहीन और फतीन और इतने फिका के माहिर थे कि आप अंदाजा लगाइए कि उलमा, बाकायदा उलमा ने किताबों में लिखा कि 50 साल के अंदर उन्होंने जितने भी फैसले किए किसी में कभी इनसे कोई गलती नहीं हुई भाई, 50 साल तक कोई गलती नहीं हुई, ऐसे जबरदस्त फैसले किए यानी कोई भी उनके फैसलों में कोई गलती न निकाल सका। और इन्होंने बड़े बड़े उलमा से इलम हासिल किया भाई, और खुद तमाम उलूम के माहिर थे भाई, ये इल्मी किराआत के माहिर थे, लुगत शेर इल्म उरूज व कवाफी इल्म फराइज यानी मीरास जो है, हदीस इल्म कलाम जिसमें अकीदे की बहस होती है, और इसी तरह इल्म हिसाब वगैरह के बहुत बड़े माहिर थे भाई। और इन्होंने इमाम सीबवे की मशहूर जो किताब है नहव के अंदर उसकी शरह भी लिखी, इल्मे नह में इमाम सीबवह की किताब बहुत मुश्किल समझी जाती है भाई, बहुत मुश्किल समझी जाती है, और इन्होंने उसकी अजीम शरा लिखी, तो जिससे इनके उलूम का अंदाजा होता है भाई। इमाम सीबवह की किताब जो वैसे ही समझना बड़ा मुश्किल काम है और फिर उसकी शरा करना तो इन्होंने बड़ी अजीम शान शरार की इमाम सी बुवे की किताब की भाई। तो ये हैं इमाम सी राफी भाई। चलिए बस भाई, बात समझ में आ गई, ये सारा सबक हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।